आइए अब हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए प्रार्थना में झुकाएं। सबसे अधिक अनुग्रहकारी पिता, इस प्रातः हम आपको इस सौभाग्य के लिए कि हम यहाँ सभागार में हों पाएं, धन्यवाद देते हैं इस निकलते हुए दिन में। परंतु हम नहीं जानते कि दिन में क्या छिपा है, परंतु हम जानते हैं कि दिन किसके हाथ में है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज और कल को थामे हुए है और सारी अनंतता आज हमें आशीषित करेगा, जैसे कि हम उसके नाम में एकत्र हुए हैं कि हम जान सकें कि उसकी सेवा करने के लिए हम कैसे जिए। पिता, ये हमारी सारी मंशा है। परमेश्वर जो हमारे हृदय को जानता है, ये जानता है कि ये सत्य है। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं उस भविष्य के बचे हुए दिन में आपकी सेवा के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ जाएं। धन्यवाद। यहाँ पर दूसरा वाला है। समस्त राष्ट्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भक्त मंडली को शुभ प्रातः, जहाँ हम इस प्रातः जुड़े हुए हैं। इसने मुझे यहाँ आने के लिए महान सौभाग्य दिया है और इस प्रातः इस जानदार विषय पर बोलूं। प्रत्यक्ष भक्त मंडली को ये वास्तव में थोड़ा चकरा देने वाला है कि ठीक मेरे सामने पर्दे हैं तो मुझे दहने और बाएं बोलना है, और न दिखने वाली भक्त मंडली मेरी दहनी ओर सभागार है और बाईं ओर व्यायामशाला भी है, और मैं फर्श पर हूँ खुले हुए पर्दे के बीच में। मेरा दहना और बायां हाथ बन रहे हैं और सभागार थसाथस भरा हुआ है और व्यायामशाला भी और आराधनालय भी, आराधनालय जो 8 पर है और पेन स्ट्रीट, और इन भरे हुए स्थानों में टेलीफोन व्यवस्था दूसरे स्थानों में ले जा रही है। हमारे पास प्रभु में बहुतायत से समय है और इस प्रातः की सेवा में हमारे पास महान आशा है। और अब आज रात्रि इस 4 दिन के अभियान के समाप्त होने पर, क्यों हमने निश्चय ही सबको आमंत्रित किया है जो यहाँ हो सकता है, हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमें आज रात्रि एक महान चरम देगा, कुछ बहुत ही अधिक असाधारणता को करते हुए, यहाँ तक कि वो सारे बीमारों को चंगा करेगा और महान चीजों को करेगा जो अक्सर वो करता है। और सांझ के लिए हम एक महान आशा में है, जनसाधारण मित्र भाव में आमंत्रित है, हर कोई, हर कलीसिया, हर नामधारी की। आपको अवश्य नहीं कि मसीही होना है, निश्चय ही हम पापियों को बुला रहे हैं कि आएं और हमारे बीच में बैठें, और हम अपना सबसे अच्छा करते हैं कि उन्हें सिखाएं कि प्रभु का मार्ग क्या है कि हम जीवित रहें। अब मैं आशा करता हूं कि भक्त मंडली आशंकित नहीं होगी, और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए मैं अधीर नहीं हूँगा, क्यों मेरी आश्चर्यजनक रातें बीती हैं, बहुत ही थकान, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ जो बातें मैं इस प्रातः करूँगा मेरे विरोध में न्याय के दिन तक रहेगी, और मैं सो नहीं सका, और मैं जानता हूँ यदि मैं इन्हें ना कहूँ तो ये मेरे विरोध में न्याय के दिन में होगा, इसलिए ये इसे कठिन बनाता है, आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और अब इस प्रातः एक महान विषय विचार करने के लिए, विवाह और तलाक, और यही कारण है कि मैंने इसे संडे स्कूल बनाया ताकि हम इस पर हम बातें कर सकें और अपना समय लें, बजाय इसके कि उपदेश प्रचार करूं। ये वचन में से एक शिक्षा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ यदि कोई सेवक या सेवक गण किसी स्थान में ये टेप उसके हाथों में आए, यदि हम इसको टेप को निकालेंगे, मैं नहीं जानता कि कलीसिया इसके विषय में क्या करती है, मैं भाई फ्रेड से निवेदन कर रहा हूँ कि इस टेप को निकालने से पहले कलीसिया के बोर्ड से बात करें, और आप लोग जो बाहर राष्ट्र में हैं, जिन्होंने टेप रिकॉर्डर लगा रखे हैं, कृपा करके आप टेप को बाहर ना दें जब तक कि आप भाई सॉथमैन से सुन ना लें इसके विषय में। अब यदि ये प्रकाशित हो जाए और कोई मेरा सेवक भाई या कोई भी मसीह कहीं भी जो इन बातों से सहमत ना हो जो मैं इस विषय पर कह रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसकी आलोचना नहीं करेंगे। यदि आप इसे वैसे न समझ सकें जैसे कि मैं इसे सिखा रहा हूं, आपके पास एक सेवक के समान, एक चरवाहे के समान अधिकार है। और जो भी आप विश्वास करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। और इस पर दो बड़े विद्यालय हैं, और यदि वहाँ दो प्रश्न हैं, तो उनमें से एक सही है या दोनों सही नहीं है। इसलिए इस प्रातः हम परमेश्वर के वचन में देखने का यत्न करने जा रहे हैं कि इसे तय करें। मेरे लिए यदि ये बाइबल का प्रश्न है, तो निश्चय ही इसका उत्तर बाइबल में है। और अब इसके थोड़ा सा पहले हमारे पास आरंभ करने के लिए ये विषय है, बल्कि इसके पहले मैं वचन पर प्रार्थना करूं, और मैं आप में से प्रत्येक पर प्रकट करना चाहता हूं कि मैं, विशेषकर आप मसीह हो, मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूं कि इस प्रातः आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और बाहर वो ना दिखने वाली भक्त मंडली जो इस प्रातः सुन रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं ईमानदार और सच्चा बना रहना चाहता हूं। अब हम ये महसूस करते हैं इन वक्तव्यों के देने पर, कोई भी, यदि ये केवल एक व्यक्ति है, इस बीच में हो कि वो जीवन और मरण के बीच में है। यहाँ बहुत से होंगे जो विश्वास करते हुए जाएंगे, संभवतः आप में से बहुत से नहीं करेंगे, परंतु मैं जानता हूं कि मेरी सेवकाई में लोग हैं जो मेरी सुनने के लिए आते हैं और सुनते हैं कि मेरे पास कहने को क्या है। अच्छा है, वे यहाँ इस प्रातः देश विदेश से बैठे हैं, बहुत से संयुक्त राज्य से, कनाडा और समुद्र पार से, और आप कल्पना कर सकते हैं जो थकान आप पर आती है कि जाने कि मनुष्य का अनंत लक्ष्य क्या है, आपके हाथों में है, क्योंकि जो आप कहते हैं एक दिन आपको पकड़ने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा, और मैं चाहता हूँ जितनी निष्ठा से हो सकता है मैं इसे लेना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, अब मैं अपने कुछ शब्दों को बदलना चाहता हूँ ताकि मैं उनके सामने बोल सकूँ। इस प्रातः बिली की जेब में कुछ चीजें थीं जिन्हें मैं मिलीजुली सभा के सामने नहीं कहा जा सका, और संभवतः मैं कुछ उनमें से कहूँगा। आपको समझना चाहिए, इसे अपने भाई के समान लें, सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ। आप एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठेंगे और उसकी सुनते हैं, वो आपसे सीधे सीधे शब्दों में कहेगा, और आप में से कुछ युवा स्त्रियां और युवा पुरुष, मैं नहीं चाहता कि आप गलत प्रभाव को लें, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें और शांत रहें, स्मरण रखें, सत्य को सत्य कहना है। और आप कोई संदेह नहीं, परंतु आप में से बहुत से होंगे जो बोला जाएगा उससे आप असहमत होंगे, परंतु मैं इसे आपको बाइबल से प्रमाणित करना चाहता हूं, और तब मैं विश्वास करता हूं यदि आप श्रद्धा से इसे सुनेंगे तो आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। और वो धारणा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं इस सारे समय, मैं विश्वास करता हूं कि ये इसकी व्याख्या करेगा, और मेरा विश्वास है कि ये करेगा। अब हो सकता है हम थोड़ा लंबा लें, एक और आधा घंटा, और हो सकता है इस पर अधिक, मैं नहीं जानता कि ये कितना समय लगेगा। और अब फिर इस समय में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि लोग आपके वचनों को थामते हैं, वे करते हैं अपने सेवक के, और निसंदेह मैं एक सेवक रहा हूँ, और वे एक सेवक के वचनों को थामते हैं जैसा कि ये एक मृत्यु और जीवन के बीच में हो, और वे अपने सेवक के वचनों को पकड़ते हैं जैसे ये मृत्यु और जीवन के बीच हो। और निसंदेह सेवक या पास्टर संभवतः उस सब के साथ जो वो जानता है कि कैसे करे, वो अपने लोगों को सिखा रहा है ठीक वैसे ही जैसा उसने धर्म विद्यालय में सीखा, कोई संदेह नहीं। परंतु जो याजक भी विभिन्न धर्मों में याजक हैं, सेवक वास्तव में याजक है, ये एक बिचौलिया है। इसलिए यदि याजक जो उसके धर्म विद्यालय में उसने सीखा और मठ में, एक मनुष्य अपनी पूर्ण निष्ठा से बता रहा है जो उसे सिखाया गया, ठीक है, तो फिर मेरे पास किसी धर्म विद्यालय या मठ का अनुभव नहीं, और इसके विरोध में कुछ नहीं, परंतु मेरा जीवन विचित्र रहा है। जब मैं छोटा लड़का था, मैं बुलाया गया, और इसमें दिखने और सुनने वाला चिन्ह मुझे दिया गया, एक अग्निस्तंभ झाड़ी पर था, 7 वर्ष की आयु में ठीक यहाँ यूटी का पाइका में। मेरे पिता श्री ओएच वदेन के लिए कार्य करते थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, और आपने पुस्तक पढ़ी है, आप कहानी जानते हैं। और उस समय से वहाँ नदी पर तब वो लोगों के सामने दृष्टिगोचर हुआ, और इसका बहुत बार चित्र लिया गया है और ये वॉशिंगटन डीसी में टंगा है एक कॉपीराइट के समान रिलीजियस हॉल ऑफ आर्ट में। केवल एक अलौकिक जीवन जो कभी वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध एक चित्र लिया गया, वही अग्नि स्तंभ ठीक उसी रूप में हर प्रकार से जो इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये यीशु मसीह आत्मिक रूप में परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र कहलाया जब वो पहले आया, अब वो परमेश्वर का पुत्र है। सहस्र शताब्दी में वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। वो मनुष्य का पुत्र आता है, एक भविष्यद्वक्ता जैसे कि उसके लिए बोला गया। अब वो परमेश्वर का पुत्र है अलौकिक में। उस महान सहस्र शताब्दी में जो आने वाला है वो दाऊद का पुत्र होगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठ रहा है। जैसा कि सब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि ये परमेश्वर की दिव्य प्रतिज्ञा दाऊद के साथ है, वो अपने पुत्र को उठाएगा कि उसके सिंहासन पर बिठाए। और अब विचित्र असाधारण सेवकाई में मुझे परमेश्वर से लेकर शैतान तक कहा गया, और ये सदा से ऐसा ही हुआ है। यही जो कैथोलिक कलीसिया के आर्च बिशप ने मुझसे कहा वहाँ उस रात्रि जब बातचीत हो रही थी। उसने कहा, भाई ब्रैनम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं को वचन में स्पष्ट प्रमाणित करता है जैसा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा बोला गया। उसने कहा, आपकी सेवा कलीसिया में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। उसने कहा, लूथरन बाइबल में है। उसने कहा, लूथरन लूथर को पहचानते हैं, वेस्ली वेस्ली को जानते हैं, परंतु पेंतिकोसल के विषय में क्या है? कहा, वे भटक रहे हैं, वे नहीं जानते कि कहाँ जाएं। और मैंने कहा, श्रीमान, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और ये वो समय था, पवित्र आत्मा महिला पर उतरा, मुझे कभी नहीं देखा, उसकी पत्नी ने, और बोली और उन्हीं बातों को प्रमाणित किया। अब ईमानदारी से, इसके पहले कि इस संदेश को मैं प्रातः प्रचारता, मैं नहीं जानता, मैंने उसे बताया, मैंने कहा, श्रीमान, मैं ये नहीं कह सकता, ये कहना एक बहुत बड़ी बात होगी, ये ऐसा ही प्रतीत होता है। एक बात जो मैं जानता हूँ कि वहाँ कुछ घटित हुआ है, ये निश्चित है। ये सारी बातें ये वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित हो गई हैं और समस्त संसार में प्रमाणित हो चुका है। ये कोई कल्पना नहीं हो सकती, ये सत्य है। ये क्या है? मैं स्वीकारता में होते हुए ये कहूँ कि इसके पहले मैं आपसे इस प्रातः बात करूँ, मैं नहीं जानता, और मैं किसी भी कार्रवाई का साहस ना करूँगा जब तक मैं उससे ना सुन लूँ जिसने मुझसे पहले बातें की और मुझे ये बातें बताई। स्मरण रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को कभी भी परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित नहीं किया। उसने कहा, तुमने कहा कि मैं था, इस और इधर मैं जन्मा और आदि आदि, परंतु उसने स्वयं को कभी प्रमाणित नहीं किया। और अब वो अग्नि स्तंभ था जिसने इसराइल के बालकों की अगुवाई करी, वो प्रभु यीशु मसीह था आत्मा के रूप में। आप ये विश्वास करते हैं? वो शब्द परमेश्वर से बाहर निकला, और तब जब वो पृथ्वी पर था उसने कहा, मैं परमेश्वर से निकला हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हम सब ये जानते हैं। और उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के पश्चात तार्सुस का शाउल दमिश्क की राह पर जा रहा था कि मसीहों को सताए, क्योंकि वे जो उन्हें सिखाया गया ठीक उसके विपरीत सिखा रहे थे। और वो एक महान योद्धा गमलीएल के अधीन, जो अपने समय का विशेष था, उनके विद्यालय में, उनके मठ में, और एक महान पुरुष और कलीसिया का एक बड़ा कार्यकर्ता, और वहाँ एक महान ज्योति थी। फिर से वो अग्नि स्तंभ, उसने उसे नीचे गिरा दिया बीच दोपहरी में, और आवाज ने कहा, शाउल शाउल, तू मुझे क्यों सताता है? और अब आप ध्यान दें, जब पौलुस शाउल उठा, उसने कहा, प्रभु तू कौन है? अब वो लड़का एक यहूदी होने के नाते वो किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कहेगा जब तक परमेश्वर के उस चिन्ह को छोड़ उसे प्रभु नहीं पुकारेगा। इसलिए वो वही अग्नि स्तंभ था जैसा कि यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं परमेश्वर से निकला और वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। वहाँ वो फिर से अग्नि स्तंभ के रूप में है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, और पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। और हम अनुभव करते हैं कि जब प्रेरित पत्रस, जिसे कलीसिया बनाने के लिए कुंजी दी गई थी, हम पाते हैं जब वो जेल में था, वही अग्निस्तंभ जेल की सलाखों में से निकलता हुआ आया, जेल के दरवाजे खोले और भेदपूर्ण रीति से पतरस को बाहर ले गया पहरेदारों को बिना छेड़े। मेरे लिए ये यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, और फिर आप सदा उसके स्वभाव से उसे जान जाएंगे। कोई भी चीज अपने स्वभाव से जानी जाती है, वो फल जो लगते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, आप फलों को ध्यान से देखें कि कैसे हैं। ये ज्योति जो कि परमेश्वर है, क्योंकि ये सदा परमेश्वर के वचन पर लौटती है और परमेश्वर के वचन को प्रमाणित करती है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करती है, और परमेश्वर वचन को भौतिक रूप में प्रमाणित करता है आपके सामने, तो इसके पीछे कुछ होना चाहिए। लोग मुझे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, मैं स्वयं को भविष्यद्वक्ता नहीं कहता क्योंकि मैं इसे कहने का साहस नहीं करता, परंतु मुझे है, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रभु मुझे आने वाली चीजें दिखाता है, घटित होने वाली बातें बताता है जो घटित हो रही हैं, और एक बार भी ये असफल नहीं हुआ, दसियों हजारों बार। हर चीज जो उसने कही कि होगी वो हुई, हम सब ये जानते हैं। यदि कोई दिखने वाली मंडली में व्यक्ति है इस प्रातः या कहीं भी बता सकता है कि कभी असफल हुआ हो, और आपको खड़े होकर बताने की स्वतंत्रता है कि ऐसा कहे, परंतु यदि हर कोई जानता है कि हर बार हजारों बार ये बिल्कुल ठीक है, तो आमीन कहे। देखा, इसी प्रकार से समस्त संसार में होगा। अब कुछ घटित होने को है। परमेश्वर कभी भी बिना उद्देश्य के इन चीजों को नहीं भेजता। मैं जरा यहाँ सोच रहा था, मैंने यहाँ अपनी एक टिप्पणी रखी थी कि इस प्रातः मैंने एक स्टड यानी बटन लगाए हुए हैं। आप में से बहुतों ने चलचित्र के इस नायक के विषय में सुना होगा, जेन रसल, और उसकी माँ पेंतिकोस्तल है, और डैनी हेनरी उसकी सगी मौसी का माँ की बहन का बच्चा, वो बैप्टिस्ट था। वो सभा में खड़ा था, लॉस एंजलिस व्यापारियों की सभा कैलिफोर्निया में 2 वर्ष पहले, और मुझे एक जोरदार वक्तव्य देते हुए बढ़ना था, एक जोरदार वक्तव्य, यहाँ तक कि ओवरसियर उनमें से एक जनरल ओवरसियर बालकनी से उतरकर प्रचार मंच पर आया और उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता कि भाई बर्नम का ये अर्थ होगा। मैंने कहा, श्रीमान, मेरा यही अर्थ है, ये यहोवा यूं कहता है, और फिर ये इस समय की कलीसिया के विषय में था, और उस समय के लगभग ये युवा व्यक्ति जो एक व्यापारी है, उसका भाई, वो वहाँ टेलीविजन के लिए चलचित्र उतार रहा था उस प्रातः। उसका दूसरा भाई राज्य मार्ग का कैलिफोर्निया में सुपरवाइजर था, और सभा समाप्त होने के पश्चात डैनी हेनरी प्रचार मंच पर आगे आ गया, इस प्रकार से जहाँ सारे पुरुष बैठे हुए थे, आकर मेरे गले में बाहें डाली और उसने ये शब्द बोले, भाई ब्रणम, मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म विरोधी नहीं, परंतु कहा, ये प्रकाशित वाक्य का 23वां अध्याय बन सकता है, जबकि वहाँ केवल 22 अध्याय हैं प्रकाशित वाक्य में। उसने कहा, मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म विरोधी नहीं। उसके पास इससे अधिक बोलने के लिए नहीं था। अब लड़का एक बैप्टिस्ट था और अलौकिक के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसकी बाहें मेरे चारों ओर थी और उसने अन्य भाषा में बोलना आरम्भ कर दिया, और जब वो अन्य भाषा में बोल चुका, वहाँ एक भारी भरकम अश्वेत महिला मेरे सामने बैठी थी। वो खड़ी हुई और बोली, इसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, मैं शरपोर्ट लुजियाना से हूँ, या बैटन रूग लुजियाना से। बोली, ये तो स्पष्ट फ्रेंच है। विक्टर ली डुक्स, जो कि एक फ्रेंच मैन था, वो भी वहाँ बैठा था, बोला, निश्चय ही मैं एक फ्रांसीसी हूँ, और ये शुद्ध फ्रेंच थी। मैंने कहा, एक मिनट रुकिए, आप लिखिए कि इसने क्या कहा, और आप लिखिए कि उसने क्या कहा, इसके पहले की बात करें, लिखिए आप क्या कहते हैं और देखें आप क्या लिखते हैं। इसलिए एक ने लिखा, दूसरे ने लिखा, इनका विराम चिन्ह भी एक सा था। और तब उस समय के लगभग जब वे अपने लेख लाए, एक अच्छा दिखाई पड़ने वाला युवा सुनहरे बालों वाला लड़का पीछे से आगे आया, जहाँ कि उसके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, वो वहाँ पीछे खड़ा था। वो चलता हुआ आगे आया, बोला, एक मिनट, मैं भी एक लेख रखना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं यूएनओ में फ्रेंच भाषा का अनुवादक हूँ, यूनाइटेड नेशंस में। उसने कहा, मैं अपना लेख छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ फ्रेंच के तीनों नोट एक से ही थे, और ये पढ़ने में इस प्रकार से थे, और ये मूल लेख से लिया गया, नोट लिया गया है। ये डॉनी का लेख है, स्वयं उसका, उसने ये अपनी जेब में रखा। निसंदेह ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन में गया और आदि आदि। क्योंकि तूने सकरा मार्ग चुना है, कठिन मार्ग, तू अपने ही चुने हुए में चला। तूने सही और मूल्यवान निर्णय लिया है और ये मेरा मार्ग है। इस क्षणिक निर्णय के कारण स्वर्ग का एक बड़ा भाग तेरी प्रतीक्षा करेगा। तूने क्या ही महिमामय निर्णय लिया है। ये स्वयं में वो है जो कि देगा और जबरदस्त जय दिव्य प्रेम में देगा। अब इस व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर यहाँ कर रखे हैं। ऊपर दिए गए वक्तव्य का अनुवाद डॉनी हेनरी की भविष्यवाणी जो भाई बर्नम पर की लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कैफेटेरिया में तीन गवाहों के द्वारा दिया गया। अब यही पुरुष जिसने ये भविष्यवाणी की नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। लगभग एक माह पहले यरूशलम में था। उसे सौभाग्य मिला था कि बाहर जाकर वो वहाँ कब्र में लेटा जहाँ यीशु मरा और गाड़ा गया था। और जबकि वो वहाँ लेटा हुआ था तो उसने कहा, उसे मेरा विचार आया इतनी प्रभावशाली रीति से कि उसने रोना आरंभ कर दिया। बोला, भाई ब्रैनम के लिए ये कितना कठिन है कि संसार के विरोध में खड़े हों और सारी कलीसिया के, जैसा कि एक बार कहा गया बिली ग्राम के हिस्से में, कहा हम बिली ग्राम को देख सकते हैं क्योंकि सारी कलीसियाएं उसके लिए एक साथ मिलकर गई हैं। हम ओरल रॉबर्ट को देखते हैं जो पेंटिकॉस्टल हैं, परंतु हमारे पास कैसे कभी कोई चीज हो सकती है जबकि ये जो लोगों को सिखाया गया उसके विपरीत हो, ये परमेश्वर है। और डैनी वो शौक के लिए क्या करता है, वो छोटे पत्थर बनाता है। वो वहाँ गया जहाँ क्रूस गाड़ी गई थी, जहाँ उन्होंने कहा कि क्रूस पत्थर में खड़ी की गई। वहाँ आसपास कोई नहीं था, उसने एक छोटा सा पत्थर तोड़ दिया और यादगार के लिए जेब में डाल लिया और घर आकर मेरे लिए बटन का एक जोड़ा बनाया। और जब उसने बनाया तो आश्चर्यजनक बात कि उसमें लहू जैसे दाग दिखाई पड़े और दोनों के बीचों बीच निरंतरता में एक पतली सी धारी दोनों के बीचों बीच। और ये हो सकता है किसी ने इस पर ध्यान न दिया हो, परंतु मेरे विश्वास के लिए ये सम्मान सूचक है। मैं विश्वास करता हूँ हर चीज का कोई अर्थ है। और अब इस समय में जो कुछ भी प्रभु का है, यदि ये बात नहीं है कि उसने भविष्यवाणी की है मलाकी 4 की और लूका 17 की भी और बहुत सारे और पवित्र वचन जिन्हें इन अंत के दिनों में घटित होना है। मैं ये बंद करते हुए कह सकता हूँ मनुष्य के लिए ये नेव डाल दी गई है जब वो आएगा। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादित हूँ। यदि ये इस प्रकार से है तो मुझे थोड़ा सा कुछ और करने दो अपनी इस अनपढ़ वाली स्थिति में कि उसका प्रेम जो मेरी ओर है उसकी सराहना को दर्शाऊं और मेरा प्रेम उससे और हमारा प्रेम लोगों से। इसलिए सच्चाई में मैं इस विवाह और तलाक के विषय को लेता हूँ। होने पाए परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे। और अब ध्यान से सुने और बहने उठे ना और ना बाहर जाएं, थोड़ी देर के लिए शांत रहें। भाई लोग भी वैसा ही करें। बाहर अपने अपने रेडियो बंद ना करें, जिस जगह से ये आ रहा है ये ना करें। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठे रहें जब तक ये पूरा ना हो जाए। ध्यान से सुने। यदि आप असहमत हैं तो वचनों को लिख लें जिनका मैं प्रयोग करता हूँ और फिर प्रार्थना के साथ उनका अध्ययन करें। इसके पहले आप अपना निर्णय लें। जैसा कि हम इस विषय को लेने का यत्न करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब ये हो सकता है कि ये थोड़ा लंबा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी में रहें। और हम सब अपना समय लें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें सच्चाई और विस्तार में, जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे अध्ययन करना है। आइए संत मती के 19वें अध्याय से आरंभ करें। और आरंभ में मैं सोचता हूँ 19वें अध्याय का 8वां पद मैं आरंभ करना चाहता हूँ। मैं पहले से भी आरंभ कर सकता हूँ और 8वें पद तक पढ़ूं 19वें अध्याय के। अब स्मरण रखें, ये बातें जो मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचन से आनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार नहीं हो सकता क्योंकि मेरा विचार वैसे ही है जैसे किसी और का, परंतु इसे परमेश्वर के वचन की निरंतरता में होना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर हर चीज को निरंतरता में रखता है। वो कभी बदलता नहीं, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? वो एक सा है। अब मैं 19वें अध्याय से पढ़ूंगा। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, मैं वहाँ रुका ताकि आप इस पर जोर दे सकें कि वो कौन था जो उसकी परीक्षा कर रहा था। उससे कहा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। अब परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये पवित्र वचन, ये प्रश्न यीशु की सेवकाई के आरंभ में ही सामने आया और मूसा की सेवकाई के आरंभ में ये मूसा के सामने आया। विश्वासियों के हृदय में ये मुख्य प्रश्न है क्योंकि पापी चिंता नहीं करता। विश्वासी परमेश्वर के सामने जितना सही हो सकता है उतना सही जीवित रहने का यत्न करता है जितना वो जानता है। इसलिए ये कोई भी धार्मिक प्रश्न आता है तो विवाह और तलाक का मामला भी आता है।
क्यों?
मूल पाप का यही कारण रहा, यही जहाँ से पाप आरंभ हुआ, और यही कारण है कि ये हर बार सामने लाया गया क्योंकि यही पाप का आरंभ है। अब मेरे पास समय नहीं कि इन सब बातों की व्याख्या करूं, परंतु मुझे प्रसन्नता होगी कि आपके पत्र का उत्तर दूं या कुछ भी जो मैं कर सकता हूं। या हमारे पास इस पर पुस्तकें लिखी हुई हैं और बहुत सारे प्रश्न या अखबार निकाल कर काटे हुए भाग भी, और इसे सिद्ध करने के लिए चीजें यहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि ये हवा थी, सेब जो उसे खाना था, जबकि ये वचन आधारित भी नहीं है। अब वे दावा करते हैं कि ये खुबानी थी, इसमें ये एक भी नहीं है। उसने व्यभिचार किया जिससे पहला बालक जन्मा जो कि केन था, शैतान का अपना पुत्र, इसलिए उसमें दुष्टता थी। ये हाबिल के द्वारा नहीं आया, शैतान का पुत्र केन था। अब मैं आपका प्रश्न जानता हूँ। हवा ने कहा, मुझे प्रभु से एक मनुष्य प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप नगर की एक सुंदर स्त्री को ले सकते हैं, दुष्ट मनुष्य, यदि उनके पास बालक था तो ये प्रभु की ओर से ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक विधान तय किया है। और विधान जैसे सूर्य उगता है, आप अच्छे खेत में कांटे का पेड़ उगाएं, ये बढ़ेगा। इसे तो बढ़ना ही है क्योंकि ये परमेश्वर का विधान है। जब बीज बोया गया तो इसे बढ़ना ही है। परमेश्वर को छोड़ कोई भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ये उसके नियमों के अधीन होता है। इसलिए जब कोई दुष्ट बीज हवा के गर्भ में बोया गया तो इसे ऊपर आना ही है क्योंकि ये परमेश्वर की उत्पत्ति का नियम है और ये और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसको परमेश्वर की ओर से आना है। यही कारण है कि लोग कहते हैं छोटे बालक, कभी कभी जब वे मसीह अभिभावकों द्वारा नहीं जन्मते वे नष्ट हैं। यीशु का लहू बालक के लिए क्षतिपूर्ति है, मैं चिंता नहीं करता वो कैसे जन्मा, वो कितनी बुराई में जन्मा। वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। छोटा बालक प्रायश्चित नहीं कर सकता क्योंकि प्रायश्चित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और वे वो पाप थे संसार के जो कि यीशु के लहू के द्वारा उठा लिए गए। बालक स्वर्ग को जाते हैं। ये मूल पाप है और यही कारण है कि ये एक प्रश्न हुआ। जब कोई महान घटना परमेश्वर की ओर से आती है, पहली बात के विषय विवाह और तलाक के विषय में क्या है? अब जैसा कि कभी रहा, ये अब भी एक प्रश्न लोगों के मध्य में है, जैसा कि ये यीशु के समय में था, जैसा ये मूसा के समय में था, ये सदा से रहा है, आज तक है लोगों के मध्य में एक प्रश्न, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। परंतु जहां एक प्रश्न है तो उसका उत्तर होना चाहिए, और उत्तर होने के नाते, जैसा कि इस सप्ताह मैंने कहा, एक सही उत्तर होना ही चाहिए। यदि किसी चीज का हमें उत्तर मिलता है और ये ठीक नहीं है तो हम जानते हैं कि ये गलत था। परंतु ये है कि आप तब तक पूछेंगे जब तक सही प्रश्न का उत्तर ना मिले, यदि आप सत्य जानना चाहते हैं। क्योंकि ये बाइबल का प्रश्न है तो इसका उत्तर बाइबल से ही होना चाहिए। ये जैसा मैंने कहा, यदि इस प्रातः मैं पूर्व की ओर जाना चाहता है और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ ये है कि मुझे मैदान में कोई निश्चित चीज ढूंढनी है और ये सीधा पूर्व है और मैं पूर्व चाहता हूँ। किसी ने कहा, भाई ब्रैनम ये पूर्व है, ये संभावित पूर्व है, परंतु ये उत्तर पूर्व है। ये उस चीज को जो मैं देख रहा था चूक जाएगा, मैं वापस आऊंगा जानते हुए कि ये गलत था। और फिर किसी ने कहा, भाई ब्रैनम इधर की ओर जाएं, अपनी दाहिनी ओर। अब ये संभावित पूर्व भी है परंतु ये दक्षिण पूर्व है। मैं उद्देश्य से भटक जाऊंगा जो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं सीमा से आगे निकल गया उस सिद्ध दिशा से। अब यदि ये ऐसा है, हमारे पास विचारों के दो विद्यालय इस विवाह तलाक पर हैं, और उनमें से एक कहता है एक मनुष्य केवल एक बार विवाह कर सकता है जब तक कि उसकी पत्नी मर ना जाए, और ये एक प्रश्न है। परंतु आप इसका पालन करने जा रहे हैं, आप बाहर निकल जाते हैं, और फिर अगला कहता है, ओ यदि पत्नी या पति कोई भी एक व्यभिचार करता है, कोई भी एक छोड़ा जा सकता है और फिर विवाह करें, आप स्वयं को इसे ऊपर पाते हैं। इसलिए देखिए, ये न ही दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व है, हम सीधा सीधा पूर्व चाहते हैं। आप पवित्र वचन से बाहर हो जाते हैं जब आप इस ओर जाते हैं, आप वचन से बाहर हो जाते हैं जब आप इधर की ओर जाते हैं। हम चाहते हैं जहां वचन से वचन मिलता है, और जानना चाहते हैं कि इसका सत्य क्या है। प्रत्येक एक अलग मार्ग लेता है और सही उत्तर लाने में असफल होता है, परंतु फिर भी एक उत्तर होना चाहिए। ये आज के समान है, कलीसिया में शिक्षा के दो महाविद्यालय हैं, उनमें से एक कॉल्विनवाद और दूसरा आर्मिनियनवाद, एक विधिवादी और दूसरा वाला अनुग्रह। और हमने ये पाया, वे लोग जो अनुग्रह में विश्वास करते हैं, कॉल्विनवादी, वे कहते हैं, धन्य परमेश्वर, ये धूम्रपान मुझे चोट नहीं पहुंचाता, मदिरापान से मुझे हानि नहीं होती, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मेरे पास अनंत सुरक्षा है। तब हम दूसरी ओर पाते हैं विधिवादी पर कहा, ओ मैं उस पर चिल्लाकर बाहर कर दूंगा, मैं उसे अपनी शांति दिखाऊंगा, परंतु मैं एक मसीही हूँ, मुझे शांति रहना होगा। देखिए, आप स्वयं को दो अलग अलग मार्गों पर पाते हैं और उनमें से एक भी ठीक नहीं। अब ये कहना कठोर बात है, परंतु ये सत्य है। हम स्वयं को दो अलग अलग मार्गों पर पाते हैं, एक ओर, दूसरा दूसरी ओर जा रहा है। अब आइए देखें सत्य क्या है। अब सुनिए और देखिए, यदि ये आपको उचित मालूम पड़ता है, उदाहरण के लिए, यदि मैं विदेश यात्रा के लिए तैयार होता हूँ और मैं अपना परिवार लूंगा, मैं अपनी पत्नी को पास बुलाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ प्रिय। अब यहाँ पर विधिवादिता की ओर, अब मेरी पत्नी, मैं आप पर कानून लागू करता हूँ। यदि जब मैं बाहर होता हूँ और तुमने किसी व्यक्ति के साथ इश्कबाजी की और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम तलाक पाई हुई स्त्री हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम आंखें इधर उधर चलाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इश्कबाजी करो, तुम ये समझती हो मैं तुम्हारा पति हूँ, यदि तुम ये करती हो तो वापस आने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब वो बढ़कर मेरी टाई पकड़ कर कहती है, मेरे अच्छे पति, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखा कि यदि तुमने किसी स्त्री के साथ आंखें लड़ाई या किसी स्त्री को बाहर ले गए या किसी स्त्री से इश्कबाजी करी तो तुम तलाक पाने वाले पति होगे जब तुम वापस आओगे। क्या वो खुशहाल घर होगा? ये विधिवादी है, ठीक है। अब दूसरी ओर कि यदि आप विदेश जाते हैं और गलती कर जाते हैं और जाकर कहें, अब देखिए मैं इस स्त्री को बाहर ले जाऊंगा, ओ मेरी पत्नी के साथ सब ठीक है, वो चिंता नहीं करती, मेरी पत्नी कहती है मैं इस पुरुष के साथ बाहर जाऊंगी, बिल के साथ कोई परेशानी नहीं है, वो चिंता नहीं करता। यदि मैं चिंता नहीं करता तो फिर मेरे साथ कुछ गड़बड़ी है, मैं सही में उस स्त्री से प्रेम नहीं करता। वो चिंता नहीं करती तो उसके साथ कुछ गड़बड़ है, वो मेरी पत्नी है, मैं नहीं चाहता कि दूसरा आदमी उसे मूर्ख बनाए, वो मेरी पत्नी है। अब इसका सही मार्ग, वहाँ वे दोनों, उनके पास सत्य है परंतु सही सत्य नहीं। अब जब मैं विदेश जाता हूँ इसे ठीक करने के लिए, मेरा छोटा परिवार जमा होता है और हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं और मैं उन्हें परमेश्वर को समर्पित करता हूँ और वो मुझे परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और जब हम करते हैं, हम विदेश चले जाते हैं, मैं विदेश चला जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करती है और मुझे उस पर विश्वास है और मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसे मुझ में विश्वास है। जब तक मैं उससे इस प्रकार प्रेम करता हूँ, उसे मेरे विषय में चिंता नहीं है कि मैं दूसरी स्त्री को बाहर ले जाता हूँ। जब तक वो मुझे ठीक ठीक प्रेम करती है तो आवश्यकता नहीं कि मैं सोचूं वो दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर गई है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं वास्तव में कुछ गलत करूँगा, गलती करूँ और किसी स्त्री के साथ बाहर जाऊँ और वापस आऊँ और उसके सामने ये मान लूँ और उसे बताऊँ, मेरा अर्थ ऐसा करने का नहीं था, मैं बस फंदे में फंस गया, ये स्त्री भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसा ऐसा आरंभ कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ वो समझ रही होगी, मैं विश्वास करता हूँ कि वो इसके लिए मुझे क्षमा कर देगी, मैं बिना बात के ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। यद्यपि वो मुझे क्षमा कर देगी, मैं ये नहीं करूँगा, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा बिना मतलब के। यद्यपि मैं जानता हूँ कि इसके लिए वो मुझे क्षमा कर देगी, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता। और इसी प्रकार से परमेश्वर के संग है, यदि मैं एक फिलियो प्रेम जो कि मनुष्य का प्रेम है, संगति का प्रेम जो कि मनुष्य को उसकी पत्नी के विषय में ऐसा अनुभव कर सकता है, तो फिर अगापाओ प्रेम के विषय में क्या है? यूनानी भाषा में शब्द का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम। ये कैसे मुझसे यीशु मसीह के विषय में करवाएगा? मैं जब तक मैं ये करने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में है कि ये करूँ, चाहे मैं कहता हूँ जब तक ये मेरे हृदय में है कि इसे करूँ, मैं इसे करने को जाता हूँ। विधिवादी मुझे ये नहीं करने देता क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इसे करने से मुझे दंड मिलेगा। परंतु इसकी वास्तविक सच्चाई, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में तब तक आता है आप इसे करना चाहते हैं, यही इसका सत्य है। दो विद्यालय हैं, न ही विधिवादी या दूसरा या कॉल्विनवाद, ये दोनों। अब हम आज ये भी पाते हैं यहाँ बहुत से विभिन्न नामधारी हैं, कैथोलिक कलीसिया है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, उनमें से प्रत्येक ये कहता है कि मार्ग वे हैं, कि मार्ग हमारे पास है, हम सत्य हैं। मेथोडिस्ट ये कहते हैं कि सत्य हमारे पास है, बैप्टिस्ट कहते हैं सत्य हमारे पास है। भाई मेरे लिए जब तक वे इस प्रकार अनुभव करते हैं तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ, समझे? इसलिए कि पिछली रात्रि जैसा मेरा उपदेश था कि वो ही वो स्थान है जहाँ परमेश्वर ने अपना नाम रखा है, आराधना का एकमात्र स्थान। आप इसलिए मसीही नहीं हैं क्योंकि आप प्रोटेस्टेंट हैं, आप मसीही नहीं हैं क्योंकि आप कैथोलिक हैं, आप इसलिए मसीही नहीं हैं क्योंकि आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल हैं, आप एक मसीही हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, न कि पानी के द्वारा। एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जल का बपतिस्मा आपको संगति में लाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मसीह में प्रवेश कराता है, यही सच्चाई है। इस विवाह और तलाक पर हमारे पास दो विचार हैं। अब जो हमारे प्रभु ने अपने वचन के साथ मोहरों के भेद हम पर खोल दिए इन अंत के दिनों में, अब आप में से बहुत से ये आपके लिए यूनानी हो सकती है, परंतु मेरी कलीसिया ऐसे समझती है। किसके द्वारा? और आपने दर्शनों के विषय में सुना होगा और क्या घटित हुआ। और प्रश्न बाइबल का प्रश्न है, हमें यहाँ ये विश्वास करने को आमंत्रित किया गया है कि इस समस्त छिपे हुए हुआ भेद जो पृथ्वी के रचने से पहले छिपा है, उसका कोई सही सच्चा उत्तर होना चाहिए। और बाइबल की भविष्यवाणियां कहती हैं कि इस दिन में ये भेद खुल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 10 और 7वें दूत के शब्द देने के समय लुदिकिया का दूत परमेश्वर का भेद खुल जाएगा। और ये अंतिम युग है जो कि लुदिकिया है। इन सारी बेदारियों को देखें जो 15 या उससे अधिक वर्षों तक चली और इससे कोई एक नामधारी बाहर निकलकर नहीं आया। लूथर की बेदारी थी, वहाँ एक नामधारी आ गया। वेस्ली वहाँ एक नामधारी आ गया। एलेक्जेंडर कैम्बेल वहाँ एक नामधारी आ गया। और ये सारे दूसरे महान जॉन स्मिथ और आदि आदि नामधारी मूडी साथ साथ। परंतु यहाँ एक था, एक बेदारी अधिकांश 3 वर्षों तक चलती है, परंतु ये 15 वर्षों से चल रहा है और एक भी नामधारी इसमें नहीं बना, क्योंकि ये बीज का समय है। अब कोई और छिलका नहीं है, एक छिलका चले जाने के बाद ये बीज है। परमेश्वर पहले ही, यदि वो इसे अब नहीं कर रहा है, वो एक कलीसिया को अपने वचन की सिद्धता के लिए बुला रहा है, यीशु मसीह। ध्यान दें, कहीं तो एक उत्तर होना चाहिए। और उसके नाते कि परमेश्वर के 7 मोहरों का भेद, 7 मोहरें, कितने ये समझते हैं, अपने हाथ उठाएं, जरा देखें। मैं सोचता हूँ हमारी अधिकांश भक्त मंडली आसपास से है। सुनिए, यदि नहीं तो जल्द ही पुस्तकें बाहर आ जाएंगी इस विषय पर। हमारे पास पुस्तकें हैं, अब इस पर कुछ पुस्तकें हैं। यीशु हमारे इस मूल विषय में हमें वापस आरंभ में आमंत्रित करता है उस सच्चे वचन के उत्तर के लिए। अब जब उसका आमना सामना इससे हुआ तो वहाँ दृश्य में 2 चीजें थीं। याजकों ने उससे कहा, क्या मनुष्य अपनी स्त्री को किसी कारण से त्याग सकता है और दूसरी से विवाह करे? और यीशु ने कहा, आरंभ में ऐसा नहीं था। तब उन्होंने कहा, मूसा ने हमें त्याग पत्र लिखने की आज्ञा दी और उसे छोड़ दें किसी भी बात के लिए जो उन्होंने चाहा। उसने कहा, मूसा ने ये किया क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं इसकी पैरवी कर दूं, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण। परंतु आरंभ या आरंभ से ये ऐसा नहीं था। प्रश्न आज का प्रश्न, जैसे संसार की शांति का, क्या ये राजनीति के द्वारा से आ रहा है, राष्ट्रों की एकता एकता? मैं आपसे कहता हूँ नहीं, ये सदा से असफल रहा है और ये फिर रहेगा। परंतु प्रश्न के लिए एक सच्चा उत्तर रहेगा, क्या पृथ्वी पर शांति रहेगी? जी हाँ, जब पृथ्वी पर से पाप हट जाए तब शांति होगी, परंतु तब तक कोई शांति नहीं होगी। राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में उठेगा, राज्य राज्य के विरुद्ध उठेगा। परमेश्वर ने पाप के लिए एक उपचार दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने एक उपचार दिया है कि पाप को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, परंतु पृथ्वी का मनुष्य परमेश्वर के उपचार को स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें एक उपचार दिया और एक मार्ग कि अपनी पत्नियों से विवाह करें और उनके संग रहें, परंतु मनुष्य परमेश्वर के उपचार को स्वीकार नहीं करेगा, इस पर उसके वचन को स्वीकार नहीं करेगा। यीशु ने ये कहा और ये हमें उसके वचनों की याद दिलाता है, ये जानते हुए कि उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी असफल हो जाएंगे, टल जाएंगे, परंतु मेरा नहीं। प्रश्न, सही उत्तर कि यीशु चाहता है कि हम वापस जाएं, आरंभ में वापस जाएं। तो फिर ये उत्पत्ति होगा, क्योंकि शब्द उत्पत्ति बीज का अध्याय बाइबल के हर प्रश्न का, और आपको सदा वापस बीज पर जाना होगा कि देखें किस प्रकार का बीज वहाँ मैदान में है, यहाँ ढूंढने के लिए कि आपकी फसल कैसी होगी। अब किस प्रकार का बीज बोया गया है? उत्पत्ति बीज का अध्याय होने के नाते हम वापस उत्पत्ति में जाएंगे। यीशु हमारा उस वचन से परिचय कराता है आरंभ में। अब स्मरण रखें, ये जब समय आरंभ हुआ था, इसके पहले ये अनंतता थी। अब हमारा प्रश्न वहाँ था, ध्यान दें, यदि हम आरंभ में जाएं, अब इसे असफल ना करें, और यही कारण है मैं धीरे धीरे बात करना चाहता हूँ, ताकि लोग जो बाहर संचार व्यवस्था पर हैं, और टेप इसे साफ साफ कहेगा, यदि यीशु ने कहा वापस आरंभ में जाओ, वहाँ पृथ्वी पर किसी भी चीज का एक जोड़ा था। वहाँ एक आदम था, एक हवा, वे केवल परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए थे। एक मादा घोड़ी, एक नर घोड़ा, एक मादा तोता और एक नर। आरंभ में जैसा उसने हमसे वापस जाने को कहा, वहाँ किसी भी चीज का एक जोड़ा था। क्या ये सच है? तब हम ये पाते हैं कि हर चीज आरंभ में सही सिद्ध व्यवस्था में चल रही थी और परमेश्वर के साथ समरूपता में, कुछ भी लीक से हटकर नहीं था। अब तक स्वर्ग में हर चीज व्यवस्थित थी, सारे सितारे, आकाश, गंगाएं, सूर्य, मंडल, हर चीज सिद्ध व्यवस्था में थी। इनमें से एक हटा, इसने सारी व्यवस्था में विघ्न डाल दिया। अब सुनिए, क्या आप देखते हैं, एक विघ्न ने सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। अब जब मानव जाति परमेश्वर के साथ एक पुरुष एक स्त्री की निरंतरता में दौड़ रही है, इस स्त्री ने पाप किया और इसने संसार की सारी व्यवस्था को परमेश्वर के साथ निरंतरता से बाहर कर दिया। इसलिए एक वचन इसमें मिलाया गया या एक वचन इसमें से निकाला गया, एक मसीही को परमेश्वर के साथ निरंतरता से बाहर कर देता है, कलीसिया को परमेश्वर के साथ निरंतरता से बाहर कर देता है, परिवार को परमेश्वर की निरंतरता से बाहर कर देता है। हर विश्वासी बाहर हो सकता है परमेश्वर के हर वचन को स्वीकार न करने के द्वारा। तब ये स्त्री थी जिसके कारण प्यारे घर से अलगाव हुआ। ये सराफीम नहीं थे जिन्होंने पृथ्वी को परेशान किया। ये आदम नहीं था जिसने घर को छोड़ दिया। ये कोई और चीज नहीं थी जिसने घर को अलग कर दिया और सारे मामले को निरंतरता से अलग किया, सिवाय एक स्त्री, हवा। और ये यहाँ है आरंभ, जिसके लिए यीशु ने कहा कि टूट गया था। यीशु ने कहा आरंभ में परमेश्वर ने एक नर और नारी को बनाया, प्रत्येक प्रकार में। और अब जब ये स्त्री, ना कि मादा घोड़ी, ना कि कुतिया, केवल स्त्री, उसने परमेश्वर की सारी निरंतरता के सारे संचालन को पृथ्वी पर तोड़ दिया और हर चीज को मृत्यु में धकेल दिया। स्त्री, ना कि पुरुष, उसने वाचा को तोड़ दिया। उसने वाचा को तोड़ दिया क्यों? उसने परमेश्वर के वचन की सीमा को पार कर दिया। अब यदि उसने अपने पति के साथ की वाचा को तोड़ दिया, उसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। तब क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ दिया, उसने अपने पति के साथ वाचा को तोड़ दिया। और जब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं और अपनी वाचा परमेश्वर के वचन के साथ, यही कारण है कि बहुत से अवैध कलीसिया के सदस्य, क्योंकि मनुष्य का झुंड एक साथ जुड़ और कहा इसका ये अर्थ नहीं है, और इसने सारी संस्था को वचन की निरंतरता से बाहर कर दिया। हम ये विश्वास नहीं करते डॉक्टर जोन ने कहा ये ऐसा नहीं था, परंतु जहाँ तक परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा ठहरे, वहाँ ये निरंतरता टूटती है। अब हम देखते हैं उस निरंतरता के टूटने से तो जीवन रेखा टूट गई थी। समय की रेखा भी टूट गई थी, वाचा टूट गई, हर चीज टूट कर बिखर गई। इसका क्या कारण था? एक स्त्री, यही जिसने वाचा तोड़ी। अब यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप उत्पत्ति 3 पढ़ सकते हैं। अब ये उसके बाद था कि मनुष्य स्त्री पर प्रभुता करने के लिए बनाया गया था परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब वो उसके साथ बराबर नहीं थी, वो स्वभाव में बराबर थी, आप जानते हैं। परंतु जब उसने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया, परमेश्वर ने पुरुष को उस पर प्रभुता करने वाला बनाया। उत्पत्ति 3:16, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, अब वो पुरुष के साथ बराबर न रही, वो परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाली बनी। क्या आप नहीं देखते नारी, वो कलीसिया यहाँ पर परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाली, जिसने उसे पूरी रीति से निरंतरता से बाहर कर दिया। और यही कलीसिया ने किया है और आत्मिक मृत्यु को सब पर डाल दिया। अब आप समझेंगे क्यों मैं इस प्रकार की बातों पर प्रहार करता हूँ। ये सत्य है, ये बाइबल का सत्य है। ध्यान दें, उसने इस प्रकार की चीजें क्यों की? कैसे वो प्रिय सुंदर सिद्ध स्त्री, मैंने एक बार एक चलचित्र देखा, मैं विश्वास करता हूँ ये यूनान में एक कलाकार जिसने हवा का चित्र रंगा, वो बहुत ही भयानक चीज जो कभी देखी गई। ये दर्शाता है कि संसारिक बुद्धि क्या देख सकता है। परंतु वो नहीं थी, वो सुंदर थी, क्योंकि वो एक सिद्ध स्त्री थी, पूरी स्त्री। ध्यान दें, उस उच्च श्रेणी में होते हुए ऐसा कार्य क्यों किया? वो पुरुष के संग ठीक थी, उसके साथ बराबरी में। परंतु हम सब जानते हैं कि उसने अपनी बराबरी को पुरुष के साथ खो दिया जब उसने पाप किया, और परमेश्वर ने कहा कि पुरुष अब से तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। अब ये वचन है, यदि आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि इसलिए कि इस समस्त राष्ट्र में इस बड़ी संचार व्यवस्था का समय बचाने के लिए, ताकि आप इसे स्वयं पढ़ सकें। ध्यान दें कि कारण उसने ये किया, कैसे शैतान ने उसको जा लिया। क्या आप जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के संग एक दिन बराबरी में था? निश्चय ही वो सब कुछ था, सिवाय एक रचियता के। वो सब कुछ था, स्वर्ग में परमेश्वर के दहने खड़ा हुआ महान सराफीम अगुआ। ध्यान दें कि कारण उसने ये किया कि वो परमेश्वर की मूल सृष्टि में न थी, मूल सृष्टि में न थी, वो एक उप उत्पाद थी। इसलिए आरंभ में जैसे यीशु ने इसका उल्लेख किया, वो परमेश्वर की मूल सृष्टि न थी, वो पुरुष की एक उप उत्पाद थी। जब यीशु ने उल्लेख किया कि आरंभ में, स्मरण रखें कि आदम नर और नारी दोनों था उस मूल सृष्टि में एक, परंतु बाद में वो एक पसली के द्वारा अलग किया गया। ध्यान दें, परंतु एक उप उत्पाद, और ध्यान दें, परमेश्वर की सारी सृष्टि में एक, प्रत्येक पशु और हर चीज केवल यही इस प्रकार बनाई गई है। दूसरी सारी मादाएं मूल सृष्टि में थी, दूसरी सारी मादाएं मूल सृष्टि में थी, परंतु हवा मूल सृष्टि में नहीं थी। देखिए, उसको ऐसे ही बनाया जाना था। थोड़ी देर में हम इसे लेंगे। ध्यान दें, इस सृष्टि में जिसमें वो थी, मूल सृष्टि में नहीं थी, परंतु एक उप उत्पाद। और इस सृष्टि में वहाँ, अब मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, परंतु मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, और आप जरा शांत बैठें, आप अच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं बना जो कि इतना धोखे से भरा हो जैसे कि एक महिला धोखे से भरी। इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता, इस प्रकार की कि कोई भी और चीज नहीं बनी। ये भी कि ऐसा कुछ और नहीं है जो कि सरलता से बहकाया जा सके जैसे एक स्त्री। अब गिरावट इस बात का सत्य प्रमाण है, आरंभ की गिरावट। वो आरंभ की सृष्टि में नहीं थी, वो आदम के अंदर थी, परंतु आरंभ में नारी लिंग में नहीं, स्वयं में वो उप उत्पाद बनाई गई थी। अब वहाँ ऐसी कोई परिकल्पना नहीं थी जो धोखा खा सके और धोखा दिया गया हो, इतना सरल जैसे एक स्त्री। कोई भी परिकल्पना नहीं या इतनी नीचे झुक सके जैसे एक स्त्री हो सकती है। अब सोचिए, वहाँ कोई ऐसी परिकल्पना नहीं सारी सृष्टि में जो इतनी नीचे झुक सके जैसे नीचे एक स्त्री हो सकती है। वो पुरुष के हृदय के सरलता से टुकड़े कर सकती है जो कोई और नहीं यहाँ इस संसार में जो उसकी पत्नी है। उस अच्छी भली पत्नी जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साथ भागती फिरे, उस व्यक्ति को देखें, उसके उन बालकों के साथ बैठे हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसकी परिकल्पना इसी प्रकार से की गई है, उसकी परिकल्पना यही करने के लिए की गई है। कोई सुअरी नहीं, कोई कुत्ता नहीं या कोई दूसरा पशु की परिकल्पना इस प्रकार से की गई जैसे स्त्री या इतने नीचे को गिरे जितनी की वो गिर सकती है। अब ये सत्य है मेरी बहनों के सम्मान के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, कोई भी पशु अनैतिक नहीं हो सकता। आप एक कुत्ते को फूहड़ कहते हैं, मादा कुतिया को आप नर को कहते हैं, एक सुअर सुअरी, परंतु उसका आचरण हॉलीवुड के सितारों से लाखों मील आगे है। ये कितना नीचे, उसकी परिकल्पना नीचे जाने को की गई है, वो नहीं कर सकती। अब इस पर विचार करें, संसार में ऐसा कुछ परमेश्वर की सृष्टि में नहीं बना जो इतना अश्लील, इतना नीचे को जाए। आप कहते हैं पुरुष, एक मिनट रुकें, हम इसे पाने जा रहे हैं कि स्त्री को हाँ कहना पड़े। ध्यान दें, इतनी नीचे गिरी हुई किसी की परिकल्पना नहीं की गई या गंदी, सिवाय एक महिला के। एक कुत्ता ये नहीं कर सकता, एक सुअर ये नहीं कर सकता, चिड़िया नहीं कर सकती, कोई पशु अश्लील नहीं, न ही ये हो सकता है, क्योंकि उसकी परिकल्पना ऐसी नहीं हुई है कि वो ये हो सके। एक मादा सुअर अश्लील नहीं हो सकती, एक मादा कुतिया अश्लील नहीं हो सकती, एक मादा चिड़िया अश्लील नहीं हो सकती, केवल एक स्त्री ही ऐसी चीज है जो ये कर सकती है। अब आप देखिए कि शैतान कहाँ गया, परंतु वो अब भी है, वही है, जिसे हाँ या ना कहने की सामर्थ है। देखिए, निर्भर करता है वे स्वयं को कहाँ रोकना चाहती है, समझे। अब हम यहाँ पर सर्पवंश को स्पष्ट देख सकते हैं, ये कहाँ से भीतर आया। केवल वहाँ एक ही स्थान था जहाँ वो जा सकता था। यदि ये तय नहीं किया गया होता, कोई अंधा है, समझे। देखिए, इसे इसी पर ही जाना था। ध्यान दें, कारण कि पशु से नहीं कर सकते, एक मादा पशु, वे मूल सृष्टि में थे, परंतु स्त्री इसे कर सकती थी क्योंकि वो मूल सृष्टि में नहीं थी। अब हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, तब आपको सीधे आधुनिक दिन में लाएंगे, नए नियम में। केवल उसी की ही परिकल्पना की गई गंदगी के लिए और अपवित्र जीवन। एक कुत्ता नहीं कर सकता और दूसरी मादा नहीं कर सकती, ये केवल स्त्री जो कर सकती है। एक कुत्ता या कोई दूसरा पशु वर्ष में एक बार, और वो अपने बालकों के लिए, न कि काम वासना के आनंद के लिए, परंतु अपने बालकों के लिए। वो सुअरी, सुअर, फुअड़, कुत्ता वर्ष में एक बार, एक समय, वो उसके बालकों के लिए। परंतु स्त्री की परिकल्पना ऐसी की गई कि किसी भी समय जब वो चाहे। मैंने कुछ चीजें यहाँ काट दी हैं, बाकी की आप कल्पना कर सकते हैं। ये कुत्ता नहीं कर सकता, स्त्री कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा बाकी आप पर प्रकट कर देगा। मैंने यहाँ काट दिया है। केवल यही एक जाति है, मादा जाति, जो नर से अधिक सुंदर बनाई गई है, और दूसरों में कोई नहीं है। परमेश्वर की सारी रचना में नर सुंदर है, जैसे पशुओं में, चिड़ियों में और आदि आदि। सदा नर ही सुंदर होता है। उस बड़े हिरन को देखें, बड़े अच्छे सींग, महान जाति और छोटी नम्र हिरनी। उस बड़े मुर्गे को देखें, अपने सुंदर पंखों के साथ, और छोटी भूरी मुर्गी। चिड़ियों को देखें, मुर्गा और मुर्गी। क्यों क्यों ये ऐसा था? परमेश्वर की सारी सृष्टि में हर जीव नर सुंदरतम है। भेड़ों के बीच में, सुअरों में, घोड़ों में, किसी भी चीज में, ये बड़ा नर सुंदर, जो सुंदर, और चिड़ियों में। परंतु मनुष्य जाति में ये स्त्री जो सुंदर है, ना कि पुरुष। यदि वो है तो कुछ गड़बड़ है, कहीं बीज में मिलावट है। मूल में ये इस प्रकार है। क्यों क्यों ये किया गया? इसके द्वारा धोखा, उसका अभिकल्पक शैतान अब भी उस पर कार्य कर रहा है इन अंत के दिनों में। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूं। सुंदर, क्या आप जानते हैं संसार के अंतर्राष्ट्रीय बर्बादी या सारे संसार में सुंदर स्त्रियों के कारण? जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि सुंदर है, उन्होंने उन्हें अपनी स्त्री बना लिया। क्या ये बात ठीक है? क्या आपने ध्यान दिया इन दिनों में स्त्रियों की बढ़ती हुई सुंदरता? मैंने पर्लो ब्रायन का चित्र देखा है, जो कि राष्ट्र में सबसे सुंदर स्त्री समझी जाती है एक समय में। इस विद्यालय में कोई भी किशोरी नहीं है, परंतु उसका प्रारूप क्या होगा जब वो सुंदरता पर आती है? स्त्रियों में बढ़ती हुई सुंदरता ये दर्शाती है कि ये धोखे का समय है। कलीसिया कब इतनी अधिक सुंदर दिखाई पड़ी जैसे आज है? हर चीज महान प्रस्तुति में, बड़ी अच्छी इमारतें और इसके और उसके लाखों लाख। क्या आप नहीं देखते? स्त्री धोखा। अब उसके समान कुछ भी नीच नहीं है, और इसकी परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि वो धोखा खा सके। और आज शैतान इन अंत के दिनों में उस पर कार्य कर रहा है, क्योंकि वो उसका अभिकल्पक है, डिजाइनर। मैं अब ये सिद्ध कर सकता हूँ कि फिर से आरंभ में चलें। किसने उस पर कार्य आरंभ किया? आदम या शैतान? परमेश्वर या शैतान? देखिए, वो उसका अभिकल्पक है। ये उसका मुख्य हथियार है कि मनुष्य को उसकी गंदगी में फेंके। एक सुंदर स्त्री होने के नाते वो पुरुष को किसी भी प्रकार झुकाती है, जैसा वो चाहती है। भाई, ये शराब के तस्कर मिलकर इस पुरुष को नहीं ले पाते। ये सुंदर स्त्री जो सड़क पर मटकती हुई आधे कपड़े पहने जा रही है, यही जो लेती है, यही वो जो धोखेबाज यहाँ पर है, और वो इसके साथ घातक है, पूर्णतः घातक। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि शैतान इसका अभिकल्पक, परंतु ये सत्य है। शैतान ने उसको रूपरेखा दी, वो अब भी करता है। पवित्र वचन में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। मुझे आपको वापस वचन में ले जाना है और आप अपना दृष्टिकोण बनाइए जैसा आप आज देखते हैं। शैतान ही वो है जो इस प्रकार की सुंदरता की रूपरेखा तैयार करता है। यदि हम ध्यान देंगे वो स्वर्ग में सारे दूतों से सुंदर था, क्या ये ठीक बात है? और उसने इच्छा की स्वर्ग को मिकाएल के राज्य से अधिक सुंदर बनाऊं, क्या ये ठीक बात है? ये भी दर्शाने के लिए कि केन उसका पुत्र था, उसने अधिक सुंदर आराधना प्रस्तुत की, अपनी वेदी को फलों और फूलों से सजाया और आदि आदि, क्या ये ठीक बात है? सुंदर, पाप सुंदर है, जिसे आज हम सुंदरता कहते हैं। सुंदरता के द्वारा पाप धोखा है। आप सड़क पर जाती हुई स्त्री को कभी नहीं देखेंगे और बताएं कि उसके हृदय में क्या है, समझे? परंतु मैं इन बातों में ये कहना चाहता हूँ ताकि आप देख सकें कि क्यों शैतान स्त्री का अभिकल्पक है। अब ये बिल्कुल ठीक है, उसके अपने पुत्र ने ये सिद्ध किया, केन ने। अब वो सुंदर है ताकि बहकाई जा सके। संसार सुंदर है इसके लिए कि धोखा दे सके। मेरा अर्थ ये भौतिक संसार, चलन, कॉस्मोस, ये सुंदर है ताकि ये धोखा दे सके। महान, अच्छे स्थान और विलासिता। भविष्यद्वक्ता को स्मरण रखें, आमोस, जब वो निकल कर आता है और नीचे नगर को देखता है और आधुनिक हॉलीवुड के समान देखता है, उसकी बूढ़ी आंखें छोटी हो जाती हैं उन सफेद चेहरे के बालों में, और वो वहाँ एक संदेश के साथ गया और उस स्थान के ऊपर चिल्लाता है। उसने कहा, वही परमेश्वर जिसकी सेवा तुम करने का दावा करते हो तुम्हें नष्ट कर देगा। ये ठीक बात है। पाप सुंदर। उन्होंने यहूदा को किसी पुराने शराबी के समान चित्रित किया, जैसे यहाँ कहीं सड़कों पर होते हैं और मुंह पर मक्खियाँ बैठी थी और आदि आदि, जैसे यहूदा हो। यहूदा सुंदर था, मजबूत, एक धोखेबाज। ये वो व्यक्ति नहीं जो आपके आसपास दिखाई पड़े। ये वो व्यक्ति नहीं, पुराना किसान, एक समस्त जोड़ा पहनकर आए और आपकी पत्नी को ताके। ये वो चालाक, वो धूर्त है। पाप संसार की आंखों में सुंदर है, परंतु परमेश्वर इस प्रकार की सुंदरता में चित्रित नहीं होता। क्या आप ये जानते हैं? परमेश्वर चरित्र में चित्रित होता है, सुंदर चरित्र में। बाइबल में यशायाह 53, यदि आप वचन को लिखना चाहते हैं, यहाँ वचनों की लाइन लगी हुई है, यहाँ एक और लिखे हैं। यशायाह 53 बाइबल ने कहा, हमारा प्रभु यीशु, उसमें कोई सुंदरता नहीं कि हम उसे चाहते, हमने अपने चेहरों को उससे छिपा लिया। क्या ये ठीक बात है? हमने उसे नहीं चाहा क्योंकि वो सुंदर नहीं था। संभवतः वो छोटा सा व्यक्ति झुके हुए कंधों के साथ, साधारण सा दिखने वाला और अगुवाई के लिए चाहने योग्य नहीं। वो अगुवा सा प्रतीत नहीं हुआ। साधारण गलियों की भाषा में बोला और आदि आदि, जैसे लोग करते हैं, साधारण लोग। इसलिए वो कोई महान, ज्ञानी, शिक्षित, शानदार, अच्छे कपड़ों के साथ नहीं दिखाई पड़ा और आदि आदि। वो बस एक साधारण सा व्यक्ति था। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते। वो लोगों के बीच में आया और गया उनके संग संग, यहाँ तक कि वे नहीं जान पाए कि वो कौन था। वो ऐसा नहीं लगा जैसे ईश्वर उनके संग चला। हम क्या सोचेंगे कि ये एक ईश्वर था, परंतु वही वो था। क्या आपने ध्यान दिया जब प्रभु परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, यशी के घर को जा और उसके पुत्रों में से एक का अभिषेक कर कि राजा हो, कि शाऊल का स्थान ले। अब लोगों ने शाऊल को चुना जबकि सैमुएल ने उनको पक्की रीति से बताया कि ये ना करे। उसने कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे पास राजा हो, वो तुम्हारा राजा है। और कहा, क्या मैंने कभी तुमसे प्रभु के नाम से कुछ कहा और घटित ना हुआ हो? क्या मैंने कभी तुमसे कोई पैसे मांगे या कुछ और कि अपनी जीविका चलाऊं? उन्होंने कहा, नहीं, तुमने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे और जो कुछ भी तूने प्रभु के नाम से कहा वो घटित हुआ, परंतु जो भी है तू हमें राजा दे। इस प्रकार उन्होंने शाऊल को चुना। देखिए संसार ने क्या चुना, देखिए इसराइल ने क्या चुना। इसराइल, परमेश्वर का अभिषेक, उन्होंने एक मनुष्य चुना जो कि राष्ट्र में उसके कंधों से ऊपर कोई नहीं था। महान, बड़ा, शानदार, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, और वो सदा खुशबू छोड़ता था। परंतु परमेश्वर ने कहा, अब मैं अपने अनुसार एक राजा चुनने वाला हूँ। इसलिए उसने कहा, सैमुएल, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, परंतु तू अब वहाँ जा, वो यशी के लड़कों में से एक है। और यशी, उसकी पत्नी और उन सब ने चारों ओर देखा, हाँ, हमारा सबसे बड़ा बेटा, वो बड़ा लंबा सुंदर पुरुष, वो राजा के ताज के लिए ठीक है, वो चतुर, वो शिक्षित, वो एक अच्छा मनुष्य है, और मैं जानता हूँ कि वो ठीक रहेगा, वो अपने शब्द सही बोलता है। जब वे उसे बाहर निकाल कर लाए, सैमुएल ने तेल की कुप्पी निकाली और उसकी ओर बढ़ा, उसने कहा, नहीं, प्रभु ने इसके लिए मना कर दिया। इस प्रकार वो नीचे की ओर छह पुत्रों पर गया और प्रभु ने उनमें से हर एक के लिए मना कर दिया। उसने कहा, क्या कोई और है? वो उसने कहा, हाँ, एक और है, वो वहाँ पीछे भेड़ों को चरा रहा है, वो वहाँ पीछे बैठा हुआ गीत बजा रहा है और उसे गा रहा है और चिल्लाता और चलता रहता है, परंतु वो एक झुके हुए कंधों वाला, स्वस्थ दिखने वाला, वो इसे कभी भी राजा नहीं बनाएगा। उसने कहा, जाकर उसे बुला लाओ। और जब दाऊद भविष्यद्वक्ता की आंखों के सामने आया, भविष्यद्वक्ता ने दौड़कर उसके सर पर तेल उंडेल दिया, कहा, यह परमेश्वर का चुना हुआ है। कोई सुंदर नहीं, परंतु चरित्र, परमेश्वर चरित्र को देखता है। मनुष्य स्वाभाविक सुंदरता को देखता है, ये धोखा है, और इसी कारण एक स्त्री की सुंदरता दी गई है धोखे के लिए, कि धोखा दे। एक सुंदर स्त्री, यदि वो इसका ठीक प्रयोग ना करे तो ये उसके लिए श्राप है, ये उसको किसी भी चीज से जल्द नरक में भेज देगी, ये मैं जानता हूँ। यदि वो सुंदर हो सके तो निश्चय ही, जब तक वो अपने पति के साथ बनी रहे, जो ठीक है वही करे, तो ये बहुत अच्छा, शानदार है। परंतु वो उसी चीज को ले सकती है, और वो कैसे इसके साथ धोखा खा सकती है, क्योंकि वो इसको ऐसा करने के लिए दिया गया है। अब ध्यान दें, परंतु परमेश्वर चरित्र में चित्रित होता है। उसकी कोई सुंदरता ना थी कि हम यीशु को चाहते, परंतु उसके समान कोई चरित्र ना हुआ इस पृथ्वी पर। अब आज हम पाते हैं कलीसिया का चरित्र, शैतान और उसका झुंड, जो बड़े सुंदर आराधनालयों को देखता, सुंदर चीजें जो कि संसार देख रहा है, ओ ये पास्टर है महान, आदि समय, आदि आदि, इतना ही, इतना याजकता और भक्तिपूर्ण, बाहर आता है ये बड़े बड़े वस्त्र और इस प्रकार की चीजें, वे से सुंदरता कहते हैं। परंतु परमेश्वर के वास्तविक संत वचन के प्रमाणित चरित्र को देखते हैं। यही उस दिन में संतों ने किया जब उन्होंने यीशु को देखा। उसमें देखने का कुछ भी नहीं था, परंतु उन्होंने देखा कि परमेश्वर उसमें है, उन्होंने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। इसी प्रकार से वे योआब और वे चरित्र दाऊद के साथ, एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति, परंतु उन्होंने देखा वो मनुष्य उसमें है, उन्होंने देखा कि परमेश्वर उसके अंदर है, और वे जान गए कि किसी दिन वो सामर्थ में आने वाला है। वे उनमें से एक ने गोलियत को, पांच भाइयों को मारा, एक ने 300 को, एक ने 300 पुरुषों को मारा। जब कुछ स्त्रियां सांझ के खाने के लिए कलियां तोड़ रही थीं और सेना जा चुकी थी, और भाला लेकर 300 फिलिस्तीनियों को मार डाला। चरित्र क्यों? वे दाऊद के साथ बने रहे, वे जान गए थे कि उस पर अभिषेक था, वे जान गए थे कि वो सामर्थ में आ रहा था। आज कलीसिया का एक शुद्ध चित्र जो वचन के साथ बनी है, हम जानते हैं कि यह प्रमाणित होने जा रही है, हम जानते हैं किसी दिन ये सामर्थ में आ रही है। यद्यपि शाऊल और वो बाकी राष्ट्रों से भागा हुआ था, परंतु वे जान गए थे कि वो सामर्थ में आने वाला था। हम जानते हैं वो भी सामर्थ में आने जा रहा है, इसलिए हम उसका वचन को लेते हैं और ठीक वहीं डटे रहते हैं, कोई मतलब नहीं कितनी कीमत देनी पड़े। यदि हमें फिलिस्तीनियों को काटना पड़े या गड्ढे में कूद कर सिंह को मारना पड़े, जैसे कि एक ने किया था, जो भी है हम जानते हैं, क्योंकि यही है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है। हम चरित्र को देखते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी इस प्रकार की अभिकल्पना के लिए क्यों अनुमति दी गई? मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यहां कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्यों? तो प्रश्न उठ सकता है, परमेश्वर ने क्यों स्त्री को इस प्रकार बनाया? उसको इस प्रकार का होने के लिए क्यों अनुमति दी गई? ये उसकी अपनी इच्छा के अनुसार है, निश्चय ही। एक मिनट के लिए यदि आप अपनी बाइबल में निकालना चाहें, आइए रोमियो 9 निकालें। एक मिनट, आपको कुछ दिखाता हूँ परमेश्वर कैसे चीजों को करता है यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए क्या करता है, रोमियो 9:14। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? जब उसने एसाव को चुना, यानी याकूब को चुना और एसाव को अस्वीकार किया, इसके पहले दोनों में से किसी को स्वयं में निर्णय लेने का अधिकार मिलता? दोनों में से किसी को? इसके पहले वे जन्म लेते अपनी माँ के घर में ही थे। परमेश्वर ने कहा, मैंने एसाव से घृणा की और मैंने याकूब से प्रेम किया। समझे क्यों? क्योंकि उसने मूसा से कहा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वो, अब यहाँ ध्यान दें, जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वो फिर क्यों दोष लगाता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? नहीं, परंतु ओ मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे का अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। थोड़ी देर के लिए इस पर तर्क करें। परमेश्वर ने ये किया, उसको इसे इसी प्रकार बनाना था, यही होना था। अब जरा 5 मिनटों के लिए सुने, मैं आपका ध्यान किसी चीज पर लाना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक महान अनंत है। आरंभ में पीछे इसके पहले की कोई आरंभ था, वो परमेश्वर भी नहीं था। क्या आप ये जानते हैं? परमेश्वर एक आराधना का उद्देश्य और वहाँ उसकी आराधना के लिए कुछ नहीं था, वो अकेला ही जीवित था और उसमें गुण थे। गुण क्या है? एक विचार। आप पाएंगे जो कि आज रात्रि के लिए पाठ का आरंभ होगा। ध्यान दें, वो अपना ही गुण था जो उसमें था। अब ये उसमें था कि पिता हो, ये उसमें था कि परमेश्वर हो, ये उसमें था कि पुत्र हो, ये उसमें था कि बचाने वाला हो, ये उसमें था कि चंगा करने वाला हो। और सारी चीजें यहाँ उसके गुणों को प्रकट करने के लिए हैं, कुछ भी क्रम या व्यवस्था से बाहर नहीं। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ से अंत को नहीं देखा? निश्चय ही उसने देखा। कुछ भी क्रम व्यवस्था से बाहर नहीं, ये बस उसके गुणों को प्रकट कर रहा है। अब वो न्यायी नहीं हो सकता था और मनुष्य को गिरने के लिए बनाए, उसे बराबरी के आधार पर रखना था, एक स्वतंत्र आचार का माध्यम कि अपना निर्णय ले, परंतु ये जानते हुए कि वो गिरेगा। अब वो बचाने वाला नहीं हो सकता जब तक कि कुछ नष्ट ना हो, वो एक चंगा करने वाला नहीं हो सकता जब तक कि कुछ बीमार ना हो। ये चीजें इसी प्रकार होनी थी, परमेश्वर ने उसे इसी प्रकार बनाया ताकि उसके महान गुण प्रकट किए जा सकें। यदि ये वहाँ नहीं था तो वो कभी भी बचाने वाला नहीं होता, परंतु हम जानते हैं वो था। यहाँ तक कि इसके पहले कोई समय था वो एक बचाने वाला था, वो एक बचाने वाला था। इसलिए किसी चीज को नष्ट होना था, ये कैसे होने जा रहा था? यदि वो लेता और इसे नष्ट करता कि उसे बचाने के लिए, तो ये उसके न्याय का न्याय नहीं था। वो मनुष्य को नरक नहीं भेज सकता था और न्यायी रहे। वो कृपालु है, सज्जन, सच्चा, ईमानदार है, वो एक महान न्यायी है। वो अपने ही विरोध में कार्य कर रहा होगा, इसलिए उसे मनुष्य को यहाँ बाहर रखना था और उसे स्वतंत्र आचरण माध्यम बनाना था ताकि वो जानते हुए कि गिरेगा और मनुष्य उसकी अपनी छवि पर, वो कैसे गिर सकता था? अब आप दिन का उजाला देख रहे हैं। इसलिए उसे एक उप उत्पाद बनाना था जो मूल उत्पत्ति से बाहर हो। अब आप देखते हैं, समझे? आप यहाँ आते हैं, देखा? तब यही जो गिरा उसने ये बनाया, ये जानते हुए कि ये गिरेगा, और ये शैतान के हाथ में डाला गया एक अनादर का पात्र होने को। आज सम्मान कहाँ अर्पित है, आप इस पर सोचें। अब ध्यान से देखें, तब फिर से क्यों उसे इस प्रकार से अभिकल्प किया गया और दूसरी मादाओं के समान नहीं? क्यों स्त्री का इस प्रकार अभिकल्प किया गया और दूसरी मादाओं का नहीं? कोई और दूसरी मादा को इस प्रकार से अभिकल्प नहीं किया गया? वे नहीं, आज वे नहीं कर सकती, इस प्रकार नहीं बनाई गई, वे ये नहीं कर सकती। तो इस मादा को क्यों नहीं ऐसा बनाया, एक स्त्री को जैसे कि दूसरी मादाएं, ताकि वो भी वैसी होती, अपने बच्चों का पालन करती, तब वो अपने पति को लेती और जीवित रहती, और जब बालक पाने का समय आता तो अपना बालक पाती। क्यों क्यों नहीं उसको ऐसा बनाया? मैं इन शब्दों को नहीं कह सकता, और आप समझते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। क्या आप नहीं जानते? यदि आप समझ सकते हैं तो आमीन कहें। जी हाँ, समझे? यहाँ युवा लड़कियाँ बैठी हैं, युवा लड़के, परंतु आप जानते हैं कि पशु वर्ष के निश्चित समय पर आते हैं और उनका जोड़ा, तब बस। परंतु एक स्त्री, वो किसी भी समय। और उसने इसे क्यों इस प्रकार बनाया? अब देखिए, उसकी महान योजना खुलती है। अब जैसे कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उतना ही सिद्ध जितना हो सकता है। मुझे ये उस दिन तक नहीं मालूम था। क्यों उसने इसे आरंभ से इस प्रकार नहीं बनाया जैसे कि बाकी मादाएं? क्योंकि ये उसके लिए घटित नहीं होता, वो सारी शुद्धता का स्रोत है। यही कारण है कि उसने शैतान को इस पर पकड़ बनाने दी। उसने इस मिलावट में क्या किया? ऐसी एक रचना होगी, उसे ऐसा नहीं होने देता, इसके लिए मूल अभिकल्प किया। उसके सारे कार्य जो मूल में उसने अभिकल्प किए अपनी निरंतरता में हैं। उसके सारे मूल कार्य अपनी निरंतरता में थे। मादा कुतिया, नर कुत्ता, देखिए, मादा गाय, नर गाय, हर चीज निरंतरता में, सारी सृष्टि में निरंतरता में थी। बीज मरता और भूमि में जाता है, जैसे कि मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना। जीव रस पेड़ के नीचे चला जाता है, अपनी पत्ती गिराता है, अगले वर्ष पुनरुत्थान के साथ वापस आता है, नई पत्ती के साथ। देखिए मेरा क्या अर्थ है, हर चीज, यहाँ तक कि परमेश्वर की प्रकृति भी सब निरंतरता में है, एक में, और यहाँ एक परमेश्वर की निरंतरता से हटकर है। प्रकृति को इस प्रकार अभिकल्प किया गया कि वो पाप नहीं कर सकती। सोचिए, परमेश्वर की मूल रचना पाप नहीं कर सकती। ओ, क्या आप इसे नहीं देख सकते, इस दृश्य में, कलीसिया में मिलावट? मूल तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर में कोई पाप नहीं। देखिए मेरा क्या अर्थ है, यहाँ एक सृष्टि है जो दृश्य में मिलावट के द्वारा आई। परमेश्वर एक कलीसिया पाने जा रहा है, परंतु इस मिलावट वाली चीज को देखें, वे उसे यहाँ पाते हैं। परमेश्वर के पास नर और मादा है, परंतु ये स्त्री, देखिए, वही लक्षण पीछे ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर के मस्तिष्क में क्या था। हम एक या दो घंटा ले सकते थे कि इसका खुलासा करते। स्त्री, इस जीव या प्राणी को इस प्रकार बनाया, उसने जीव बनाया, उसे बदला ताकि शैतान उस पर अधिकार कर सके, और उसने किया, वो अब भी उस पर अधिकार किए हुए है। अच्छा हो कि वो क्रूस की ओर भागे, जैसे पुरुष भी। ध्यान दें, सारी सृष्टि निरंतरता में चलती है। यदि उसने स्त्री को मूल उसी सृष्टि में बनाया होता तो वहाँ पाप नहीं होता। क्यों? वो इसे नहीं कर सकती होती। वो इसे नहीं कर सकती थी। वो मूल सृष्टि की मिलावट है। इसलिए सारा पाप मूल सत्य का भ्रष्ट होना। झूठ क्या है? सत्य को भ्रष्ट किया गया। व्यभिचार क्या है? सही कार्य को भ्रष्ट किया। इसलिए वहाँ भ्रष्ट किया गया जीव, वहाँ सारी चीज भ्रष्ट हो गई, और समस्त चीज का अक्षर विन्यास पाप, ये ठीक वहीं पर है। इसलिए ये प्रश्न बहुत बड़ा है। केवल एक टुकड़ा छीलन जो मनुष्य से बना, उसके द्वारा धोखा दिया। परमेश्वर ने इसे बनाया, ठीक यहाँ पर इसे सिद्ध किया, इसको इसलिए बनाया गया था। एक आचरण रहित स्त्री सबसे गिरी चीज है जो इस पृथ्वी पर सोची जा सकती है। युवा महिलाएं, मुझे इसके लिए क्षमा करें, वो मनुष्य कूड़ेदान को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती, कामुकता का प्रदर्शन। बस यही है, एक आचरणहीन स्त्री, मनुष्य की कामुकता का कूड़ेदान, एक दूषित, गंदी, गिरी हुई गंदगी उसके द्वारा छोड़ी गई। यही जो इस प्रकार से बनाई गई धोखे के लिए। हर पाप जो कभी पृथ्वी पर हुआ वो एक स्त्री के द्वारा हुआ। अभी शिकागो के से एक विवेचना करने वाला एक स्त्री ने ये लेख लिखा, पुलिस बल की, जो उन्होंने संयुक्त राज्य के महानगर संयुक्त राज्य से पता लगाया, हर अपराध के पीछे 99% जो संयुक्त राज्य में किसी भी रूप में हुआ या तो उसमें या उसके पीछे स्त्री है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अंत में हम एक चीज को ले सकें, ताकि आप देख सकें कि मामला क्या है। वो धोखा खाने के लिए बनी, जैसा आरंभ में उसने आदम के साथ किया, उसे बताया कि फल लुभावना था और आदि आदि, उसको धोखा देने के लिए और उसे वचन से हटाने को। आज कलीसिया इसी प्रकार से करती है, वही चीज। परंतु फिर इसके बाद वो उस पर प्रभुता करने वाला हो गया कि उस पर प्रभुता करे। अब आज के दिन में क्या अंतर है, आज के दिन की अवधारणा में बजाय कि वो उस पर प्रभुता करे, वो उसका ईश्वर बन गई। निश्चय ही वो उस पर प्रभुता करती है। अब संभवतः आप अच्छी तरह समझते हैं कि मैं कहाँ की ओर संकेत कर रहा हूँ। उसकी सुंदरता के द्वारा और उसकी कामुकता के नियंत्रण के द्वारा, उसका आकार जो उसे शैतान के द्वारा मिला, वो उप उत्पाद जो शैतान ने किया, उसे परमेश्वर के पुत्रों को धोखा देने के लिए भेजा गया, और वो बहुत सारों को नरक में धकेल सकती है बजाय किसी और दूसरे यंत्र के जो शैतान के पास है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आचरणहीन के विषय में बोल रहा हूँ, न कि आप बहने। हम आपको आपका स्थान देंगे, सही स्थान, कुछ मिनटों में यहाँ परमेश्वर के वचन में। ये आरंभ से परमेश्वर की योजना में था, आरंभ से। अब आज इसे करने के लिए संयुक्त राज्य का ईश्वर क्या है? आपको याद होगा, वर्षों पहले मैंने इस पर आराधनालय में प्रचार किया था। इस आधुनिक दिन का ईश्वर एक छोटी चंचल वहाँ श्रृंगार के साथ बैठी है और उसका वस्त्र घुटनों से ऊपर सरका हुआ है और इस प्रकार की चीज। मैंने कहा था, देखो तुम्हारा ईश्वर, और ये ठीक बात है। वो हर विज्ञापन पर अधनंगी है, वो सड़क पर भी उसी प्रकार है। ये आरंभ से ही शैतान का एक यंत्र है, यीशु ने कहा, समझे? अब हम इसे ऐसा ही देखते हैं और आरंभ से, और यही इसके विषय में वो बात कर रहा है। अब मूर्ति पूजक उसे ईश्वर बनाया करते थे, क्या आपको ये मालूम है? एक देवी, निश्चय ही ये किया, उन्होंने उसे देवी बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी आराधना में कामुकता का कार्य किया। उन्होंने ये दावा किया कि वो सृष्टिकर्ता थी, उसने बीज को अपने घर में रखा और सृष्टि की। ये एक झूठ है, केवल एक सृष्टिकर्ता है और वो परमेश्वर है। परंतु आपको स्मरण है कि वहाँ पौलुस इफिसियों की डायना पत्थर की एक मूर्त, कहा स्वर की देवी, नीचे फेंकी गई। क्या आप नहीं देखते कि मूर्ति पूजक कैसी आराधना करते हैं? और हम ये नहीं जान रहे हैं कि वापस सीधे मूर्ति पूजा पर फिर से घूमे, स्त्रियों पर, इस पृथ्वी पर सबसे नीच जीव, स्त्री पूजा। वो मनुष्य को जैसा चाहे वैसा घुमा देती है, ये ना जानते हुए कि बाहरी सारी सुंदरता ये अंदर का नरक है। सुलेमान ने कहा उसके फाटक अधलोक के फाटक हैं। अब हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यीशु ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा, दूसरा अध्याय 15वां पद, निकोलाइयों की शिक्षा। वो बढ़ती हुई कलीसिया स्वयं को वचन से दूर कर रही थी। और यहाँ हम स्पष्ट रीति से ये देख सकते हैं कि भद्दे अभक्ति गंदे कार्यक्रम जो हमारे टेलीविजन पर, हॉलीवुड की कामुकता भरी रानियाँ, हम इस नगर की गंदगी देखते हैं और ये बालक, छोटी छोटी लड़कियाँ इधर उधर सड़क पर घूमती फिर रही हैं, उन कसे हुए वस्त्रों के साथ मटकती फिर रही हैं, और इतनी ठंड की मरने के लिए जमा दे। वे नहीं जानती कि ये शैतान ये कर रहा है, वे प्रेत आत्मा से ग्रस्त हैं और नहीं जानती। आप कुतियों को ये करते नहीं देखते, क्या आपने देखा? आप किसी भी मादा को ये करते हुए नहीं देखते, और कोई भी भला नर ना ही उसके पास जाता है। देखिए, अब आपको चित्र समझ में आता है। प्रभु चाहेगा तो कुछ ही क्षण में हम किसी चीज से परिचित करेंगे। अब आप निकोलाइयों को देखते हैं और आप उनकी शिक्षा को देखते हैं, आप अल्पवयस्क रानियों को देखते हैं जो वे इन्हें पुकारते हैं, ये सड़कों पर अदनंगी। एक और उस भद्दे कार्यक्रम में जाया करते हैं और उन अदनंगों को, जरा अपनी आंखें खोलो, सड़कों पर देखो। अब बस आपको इतना करना है, सब कुछ नंगा पना है निश्चय ही। वे इसके लिए क्या करते हैं? तरसाने, ललचाने के लिए। केवल यही वो जो कर सकती है। वो ये इसलिए करती है क्योंकि वो गंदी है। वो ये इसलिए करती है क्योंकि वो ऐसी ही बनी है। वो ये अनुभव नहीं करती कि वो शैतान के हाथों में उसका यंत्र है, और वो यही है। यहाँ तक कि आज हमारे विद्यालयों में वे यौन क्रियाएं सिखा रहे हैं, स्त्री पूजा का सड़ा हुआ संसार। मैं जानता हूँ वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते। खड़े होकर आराधना के गीत गाते हैं और आदि आदि, एक दिन और इस स्त्री के संग सारी रात इधर उधर भागते फिरते हैं, समझे? ठीक है। जबकि परमेश्वर की दृष्टि में वचन वो सारे जानवरों में जो पृथ्वी पर हैं सबसे नीच है। ध्यान दें, इसी कारण परमेश्वर ने उसे अपना वचन प्रचार करने से रोका। ये ठीक बात है। पहला तिमोथियस 2:9-15, और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे, न पुरुष पर आज्ञा चलाए, समझे? और पहला कुरिन्थियों 14:34, स्त्रियाँ कलीसिया की सभा में शांत रहें, क्योंकि उसे बोलने की आज्ञा नहीं, उन्हें शांत रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। परंतु आज कलीसिया क्या करती है? वे उसे पास्टर बनाते हैं, प्रचारक, जबकि बाइबल ये पूरी रीति से मना करती है। और बाइबल ने कहा, जैसे व्यवस्था ने भी कहा है, इसे निरंतरता में चला रहा है सारे मामले को। जैसा कि पिछली रात्रि मेमना था आराधना का मात्र स्थान, मेमने के लहू के नीचे आज केवल यही स्थान है मसीह में। आपके पास केवल यही एक मार्ग है कि उसके पास आए। आराधना का केवल यही एक स्थान, ये सदा इसी प्रकार था। लहू के नीचे ही आराधना का केवल एक स्थान है। इसलिए अब हम सारे दृश्य को अब खुलता हुआ देखते हैं, वो वही है। इसी कारण परमेश्वर ने उसे सिखाने नहीं दिया, उसे कलीसिया में कुछ नहीं करने दिया, केवल ढके हुए मुख के साथ बैठे। अब क्या आप देख सकते हैं क्यों मैंने ये बातें कही और वे चीजें की जो मैंने की? बहन भाइयों, मैं अपने हृदय में इन सब बातों को जानता था। बहनों, मैं जानता हूँ, मैं आपका अपना स्थान है, एक मिनट, और वो शानदार चरित्र जो परमेश्वर ने आप में ढाला है। परंतु मैं दूसरी ओर बोलने का यत्न कर रहा हूँ, ये दर्शाने को, वास्तव में आप कहाँ से हैं आरंभ में। यीशु ने हमें बताया, वापस आरंभ में जाओ इसे ढूंढने के लिए, यही जो हम कर रहे हैं। और मुझे इसके महत्वपूर्ण बिंदु के हिस्सों पर जोर देना था, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझते हैं, और आप लोग जो इस टेप को सुनेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं। जरा पीछे जाएं, ये केवल ये दर्शाने को कि यीशु ने कहा, वापस आरंभ में जाओ और ढूंढो सारी चीजें, वापस आरंभ में जाओ। क्या आप आज देख सकते हैं क्यों वे लोग कहते हैं कि मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ? ये सच्चाई से दूर है, मैं नहीं करता। वे कहते हैं एक स्त्री से घृणा करने वाला, स्मरण रखें, वे पौलुस को भी स्त्री से घृणा करने वाला कहते थे। अधिक समय नहीं हुआ, एक महिला सेवक ने कहा, ओ आप पुराने पौलुस के समान हैं। उसे कुल मिलाकर ये करना था कि हम औरतों को ले। परमेश्वर का एक संत जिसे बाइबल लिखने की अनुमति दी गई, नया नियम, और उसके वचनों पर विवाद करे। उसने कहा, यदि स्वर्ग से कोई दूत इसे छोड़कर कुछ और सिखाए जो मैंने कहा, वो श्रापित हो। उन स्त्री प्रचारकों को छोड़ दो। उन्होंने कहा, एलिया स्त्रियों से घृणा करने वाला था, वो स्त्रियों से घृणा करने वाला नहीं था, वास्तविक स्त्रियों से। उसने इजाबेलों को पसंद नहीं किया। और यदि ये ऐसा है तो परमेश्वर को वैसा ही उसी प्रकार ही होना चाहिए, क्योंकि वो वचन है जो भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है। इसलिए ये परमेश्वर उसी प्रकार ही होना चाहिए। इसलिए देखिए, वो आरंभ से मूल सृष्टि को जानता है। उसने कहा आरंभ से, जिनके पास वचन आया वे भविष्यद्वक्ता थे। उसने उसे पुरुष के लिए बनाया और पुरुष को स्त्री के लिए नहीं। क्या आपको ये मालूम है कि स्त्री पुरुष के लिए बनाई गई थी और पुरुष स्त्री के लिए नहीं? कितने ये बात जानते हैं? बाइबल ये सिखाती है, ठीक है। स्त्री को पुरुष में स्थान दिया गया था गिरावट से पहले सारी सृष्टि के ऊपर बराबर, परंतु गिरावट के बाद वो उसका शासक था। उसे हर मामले में शांत रहना चाहिए अमूल आरंभ होने के बाद। परंतु गिरावट के बाद वो उसका शासक था, उसे हर मामले में शांत रहना चाहिए अब मूल आरंभ होने के बाद। यीशु ने कहा आरंभ से ऐसा नहीं था, ये जब समय आरंभ हुआ, जब परमेश्वर ने पहले इसे अपनी मूल सृष्टि में बनाया। वे जो समझते हैं फिर आमीन कहें। आरंभ में परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री की सृष्टि की, परंतु तब स्त्री को पशुओं से भिन्न बनाया सारे दूसरे पशुओं से धोखे के लिए। अब ध्यान दें, आरंभ में ये ऐसा नहीं था, वो बनाई गई थी। यदि वो अपनी मूल स्थिति में बनी रहती तो वो कभी भी नहीं गिरी होती, परंतु वो गिरावट का कारण हुई, विघ्न जिससे परमेश्वर की सारी निरंतरता टूट गई और इस पृथ्वी पर मृत्यु, दुख और हर चीज आ पड़ी। वो इस प्रकार बनी थी। अब ध्यान दें, बाद में आरंभ के बाद समय आरंभ होने के बाद वहाँ पीछे जो अनंतता थी समाप्त हो गई। ध्यान दें, हवा के द्वारा जो आई उसके बाद, गिरावट के बाद वहाँ इस बात की आवश्यकता थी कि दूसरी वाचा बांधी जाए। अब ये आपको ठोकर खिलाने जा रहा है, परंतु मैं आपको ये सिद्ध करने के लिए कि ये सत्य है वचन देने जा रहा हूँ।
नाउ नोटिस आफ्टर द फॉल जीसस सेड।
अब ध्यान दें, गिरावट के बाद यीशु ने कहा परमेश्वर आरंभ में एक ही प्रकार बनाया, परंतु अब गिरावट के बाद, अब इसके आगे जा रहे हैं, वाचा बराबर की थी, परंतु अब गिरावट के बाद एक और वाचा बांधी गई। अब वो उसके संग शासक नहीं थी, दोनों की अलग अलग वाचा होनी चाहिए थी। अब जरा देखते हैं यदि ये ठीक है, उत्पत्ति 3 को लेते हैं और देखते हैं यदि ये ठीक है। अब जैसा कि हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम इन सारी बातों में सकारात्मक होना चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य पर सिखाए और लाए गए हैं, ताकि ठीक यहाँ हमारे पास थोड़ा समय हो, क्योंकि हम अंत से अधिक दूर नहीं, विषय के अंतिम भाग को पालें, ये दर्शाने को कि तलाक के विषय में क्यों और क्या है और आदि आदि। अब उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, और अब हम तीसरे से आरंभ करेंगे और 16वां पद, आइए 14वें से आरंभ करें। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, अब वो इसे श्रापित करने जा रहा है, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रतिज्ञा हो रही है, मसीहा बचाने के लिए स्त्री के द्वारा आ रहा है। फिर स्त्री से उसने कहा, अब देखिए, अब वहाँ सर्प के साथ एक वाचा है जो कि वे पहले ठीक थे आरंभ में या आरंभ के पहले। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब वो बिल्कुल भी बराबर की नहीं रही, अब उसे पलट दिया गया और वो स्त्री शासक है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अब आदम को श्रापित नहीं किया, तेरे कारण भूमि शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। दो वाचाएं। अब आरंभ समाप्त हो गया, जो यीशु ने कहा आरंभ में ऐसा नहीं था। अब हमारे पास दूसरी वाचा है, ध्यान दें, ये दूसरी वाचा है। अब वहाँ उत्पाद और उप उत्पाद के लिए वाचा है। ध्यान दें, गिरावट सृष्टि के हर जीव के लिए परेशानी, मृत्यु लेकर आई, सारी सृष्टि में भिन्नता हो गई। अब आइए ध्यान दें, इस विषय में यीशु ने क्या कहा। आरंभ से ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा नहीं है वहाँ से, अब ये आरंभ के बाद में। अब वहाँ दो वाचाएं, पहली बस एक वाचा थी, आदम और हवा बराबर थे, एक पुरुष और एक स्त्री। अब स्त्री ने पाप किया और वो क्या करती है, वो उन सबको मृत्यु में धकेल देती है और इसके द्वारा परमेश्वर को वाचा बांधनी पड़ी, दूसरी वाचा। ये ठीक यहाँ है, उत्पत्ति 3:16, उसने दूसरी वाचा बांधी। अब संसार की जनसंख्या फिर बढ़ानी थी, परमेश्वर की मूल सृष्टि के द्वारा नहीं, जैसे कि आरंभ में, मूल सृष्टि के द्वारा नहीं, परंतु काम इच्छा के द्वारा। अब ये आरंभ की चिंता करता है, क्या नहीं करता। आरंभ में वहाँ केवल एक पुरुष और एक स्त्री थी, एक नर और एक नारी, परंतु जब उसने वो रेखा पार कर दी, इस पाप को लाई, अब संसार को फिर बसाना था काम इच्छा के द्वारा, ना कि सृष्टि के द्वारा, कामुकता के द्वारा। देखिए अब स्त्री कहाँ पर है अब, परंतु अब ये यही रीति है जिसके द्वारा आज संसार बसा, स्त्रियों के द्वारा। इसी कारण यीशु को स्त्री के द्वारा आना पड़ा कि इसे फिर मूल आरंभ पर फिर से लाए, बिना काम वासना के द्वारा। वो कुंवारी से उत्पन्न हुआ, परंतु हालेलुया, एक समय आएगा जहाँ काम वासना और ना होगी, परंतु परमेश्वर अपने बालकों को भूमि की मिट्टी से बुला लेगा वापस, जैसे वह मूल में थे, किसी स्त्री के द्वारा नहीं, परंतु मिट्टी के ढाले जाने और कॉस्मिक अंतरिक्ष उजाले से होते हुए और पेट्रोलियम, वो फिर से सृष्टि करेगा जैसे उसने आदम की पहली बार की। यीशु ने ये संभव किया, परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य बनाने के द्वारा और संसार में आया ताकि वो मर सके इस स्त्री के द्वारा। अब ये पाप के द्वारा परीक्षा का समय है। अब आप देखते हैं, आरंभ के बाद में ये कुछ और था जो प्रस्तुत किया गया। अब ये आपको झटका देगा, क्या आप थक गए हैं, थोड़ा सा शांत बैठें, थोड़ी देर और। तब जब पुरुष और स्त्री के द्वारा दोहरी वाचा बांधी गई, काम वासना से होते हुए, अलग से दूसरी वाचा, मूल वाचा नहीं परंतु दूसरी वाचा। अब क्या प्रस्तुत किया गया, बहु विवाह सब
में।
तब आरंभ के पश्चात बहु विवाह प्रस्तुत किया गया, मनुष्य और पशु दोनों में। आरंभ के बाद गिरावट, अब परमेश्वर दूसरे में नया स्वभाव फिर से तय करता है, काम वासना के द्वारा। परमेश्वर ने पहला बिना काम इच्छा के द्वारा सृजा, क्या आप इसका विश्वास करते हैं। अब ये दूसरी वाचा प्रकृति के साथ, उसने इसे दूसरे क्रम में तय किया, काम इच्छा के द्वारा। दूसरी वाचा, एक नर बहुत सारी मादाएं, एक नर हिरन हिरनियों का सारा झुंड, क्या ये ठीक बात है। एक सांड सारी गायों का पूरा झुंड, एक मुर्गा आंगन भरी मुर्गियां, क्या ये ठीक बात है। एक दाऊद उसका अपना मनपसंद 500 पत्नियों के साथ, उसके 100 बालक उत्पन्न हुए एक वर्ष में विभिन्न स्त्रियों के द्वारा, एक मनुष्य परमेश्वर का अपना मन पसंद, एक सुलेमान 1,000 पत्नियों के साथ। परंतु अब ध्यान दें, आरंभ में ऐसा नहीं था, परंतु अब ये बाद में, आरंभ के, स्त्री ने ये किया, तब वो हो गई जो वो अब है, समझे। दाऊद राजा जो मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, इसे अपने मस्तिष्क में रखें। दाऊद मसीह का प्रतिनिधित्व, क्या आप इसका विश्वास करते हैं। मसीह अपने सिंहासन पर बैठने जा रहा है, और ये दाऊद एक पुरुष परमेश्वर के अपना मन पसंद 500 पत्नियां थी। देखिए मेरा क्या अर्थ है, दाऊद अपनी 500 पत्नियों के साथ, सुलेमान अपनी 1000 के साथ। स्वभाव से सुलेमान दाऊद का पुत्र है जो कि यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मिक में दाऊद का पुत्र। परंतु ये स्वाभाविक काम इच्छा का जीवन ये आत्मिक होने जा रहा है। सृष्टि से क्या हुआ, क्यों सृजा हुआ, देखिए आरंभ में ये इसी प्रकार था, परंतु अब इस जीवन में नहीं है जिसमें अब हम जीते हैं। ध्यान दें, अब इस पर न चूकें, इसे अपने हृदय के अंदर उतार लें। परंतु वे स्त्रियां एक और पति नहीं कर सकती, वो मूल सृष्टि है, स्त्री नहीं। वे स्त्रियां और दूसरा पति नहीं कर सकती, परंतु वे एक पति हजारों पत्नियां कर सकता है। ये यहोवा यूं कहता है, ये बाइबल है। अब मैं वापस चला गया, अपना समय लिया और आपको सामने दिखाया कि ये कहां से आरंभ हुआ, यीशु ने क्या कहा। अब क्या आप इसे स्पष्ट देखते हैं, वे कर सकते हैं जितनी। ओ, आप कहते हैं ये केवल इसराइल के लिए था, क्या ये? जब अब्राहम सारा को फिलिस्तीन देश में ले गया, वहाँ अभिमेलेक नाम का एक राजा था और सारा 100 वर्ष की थी, ठीक यही, परंतु वो एक युवा स्त्री में बदल चुकी थी और सुंदर हो गई थी। क्या आप ये जानते हैं, ठीक है। और अभिमेलेक अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहा था, आपको इस पर मेरा संदेश याद है। अभिमेलेक सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, संभवतः उसके पास जनान खाना था, परंतु वो उसे नहीं ले सकता था यदि वो अब्राहम की विवाहिता थी। इसलिए अब्राहम ने सारा से कहा, तू ये कहना कि तू मेरा भाई है, क्योंकि वो तुझे मार डालेगा ताकि वो तुझे ले सके। क्यों नहीं, वो केवल अब्राहम को देश से बाहर खदेड़ देता और उसकी पत्नी को ले लेता और चलता रहता। ये व्यवस्था केवल विश्वासियों के साथ नहीं, परंतु सृष्टि में सारे लोगों के साथ है। पापी या एक संत, इन कार्यों के लिए आप एक उत्तरदायी मनुष्य हैं। वहाँ एक मूर्ति पूजक राजा, कितने जानते हैं कि ये कहानी सत्य है। ये बाइबल है, उत्पत्ति का लगभग 16वां अध्याय। मैं सोचता हूँ, ध्यान दें, अभिमेलेक उसे अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है। उसने स्वयं में तय किया कि इस नई इब्रानी लड़की को ले, और उसने कहा ये मेरा, वो बोली ये मेरा भाई है, उसने कहा ये मेरी बहन है, और अभिमेलेक ने कहा तो फिर मैं इसे अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता हूँ। क्या आप कल्पना कर सके, एक मनुष्य इस प्रकार की बातें कर रहा है, परंतु उसने ये किया। और फिर उस रात्रि जब वो सोने के लिए गया तो प्रभु उस पर स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, अभिमेलेक तू मरे हुए मनुष्य के समान है। वो उस यहूदी लहू की उस धार को बचा रहा था, आप समझे। उसने कहा तू एक मरे हुए मनुष्य के समान है, जो विवाह तूने करने को ठाना है, तूने दूसरे मनुष्य की पत्नी को लिया है। उसने कहा, प्रभु आप मेरे हृदय की सत्य निष्ठा को जानते हैं। कहा, क्या उसने मुझसे नहीं कहा कि वो उसका भाई है, क्या उसने स्वयं नहीं कहा कि वो मेरी बहन है। उसने कहा, मैं तेरे हृदय की सत्य निष्ठा को जानता हूँ, इसी कारण मैंने तुझे अपने विरुद्ध पाप करने की अनुमति नहीं दी। क्या ये ठीक बात है। कहा, उसकी पत्नी वापस कर दे, क्योंकि वो मेरा भविष्य रखता है, और जब तक तू उसकी पत्नी को नहीं लौटाएगा और वो तेरे लिए प्रार्थना करे, तेरा याजक नहीं। यदि वो तेरे लिए प्रार्थना न करे तो तेरा सारा राष्ट्र नष्ट हो गया। आमीन। एक आश्चर्यजनक अनुग्रह है, तेरा सारा राष्ट्र गया। ये उस पुरुष की स्त्री है और वो मेरा भविष्य रखता है। आमीन। ये यहोवा यूं कहता है, ये वचन है, ठीक है। अब हम पाते हैं मृत्यु का कारण हुई, मृत्यु स्त्री के पाप का कारण है, स्त्री के द्वारा आई, पुरुष के नहीं। उसके जीवन के जीने के द्वारा और उसके द्वारा सारी मृत्यु आती है। उसके जीवन देने की विधि मृत्यु है। कितने ये बात जानते हैं, अय्यूब 14। यदि आप वचन को लिखना चाहते हैं, मेरे पास है। यदि आप इस पर प्रश्न करते हैं तो मैंने वचन लिखा हुआ है इसके हर छोटी चीज के लिए। यदि आप अय्यूब 14 पढ़ना चाहते हैं, ये कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का होता है और दुख से भरा। क्या ये ठीक बात है। वो फूल के समान खिलता है, वो काटा जाता है और नष्ट होता है और आदि आदि, समझे। हर मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो मृत्यु में जन्मता है जैसे ही वो आता है, परंतु जब वो परमेश्वर की सृष्टि में जन्म लेता है वो मर नहीं सकता। वो दूसरे वृक्ष से है जो अदन वाटिका में था, मसीह। अनंत जीवन वृक्ष के द्वारा आता है। ओ, आप कहते हैं वो एक वृक्ष थी, निश्चय ही। अच्छा, उन्होंने कहा तू इस पेड़ से न खाना। परमेश्वर ने कहा वहाँ पीछे उत्पत्ति में, तू इस वृक्ष में से न खाना, क्योंकि स्त्री एक वृक्ष है, वो फल का वृक्ष है। आप अपनी माता का फल हैं, आप गर्भ का फल हैं, ये ठीक बात है। और फिर जीवन के वृक्ष का फल जो कि अदन की वाटिका में था, मसीह है। स्त्री के द्वारा मृत्यु आती है, मनुष्य के द्वारा मूल सृष्टि में जीवन आता है। स्त्री से जन्म लेना मृत्यु है, मसीह से जन्म लेना जीवन है। विचार को समझे, यही जहां आप देखते हैं देवियां कहां चली गईं, क्या नहीं देखते? पहला आदम और हवा दूसरे आदम और हवा का प्रतीक है, गुणन को देखते हैं। जब आदम और हवा का बढ़ना कामुकता के द्वारा है कि पृथ्वी पर बढ़े, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने बस नर और नारी बनाए, जैसे उसने दूसरी सृष्टि की। देखिए वैद जैसे कि कलीसिया। अब आइए परमेश्वर प्रमाणित होते हुए इस सत्य को सामने रखते हुए थोड़ा और आगे खोज करें, यदि आप चाहें तो। ठीक है, अब हो सकता है कि ये आपको थोड़ा आघात पहुंचाए जब तक कि हम इसकी तह में पहुंचे, परंतु मैं आपको इसका सत्य दिखाने जा रहा हूँ। कोई भी याजक विधवा से विवाह नहीं कर सकता, क्या आप ये जानते हैं? आप इसे पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, आप इसे लेवे व्यवस्था में पाते हैं, लेवे व्यवस्था 21:7 और हिजकेल 44:22। और ये आपको दिखाएगा कि याजक पद मनुष्य के द्वारा छू हुई किसी भी स्त्री से ब्याह नहीं करेगा। ये यीशु मसीह की कुंवारी दुल्हन का प्रतीक है, क्योंकि वे परमेश्वर की आग से व्यवहार करते हैं, याजक करते हैं, हारून के पुत्र। हमारे पास ये सब पढ़ने के लिए समय नहीं है और दोपहर तक निकलना है, अभी हमारे पास 20 मिनट हैं। और वे हारून के पुत्र थे जो परमेश्वर की आग से व्यवहार करते थे, इसलिए वे किसी स्त्री से विवाह ना कर सके जिसको किसी दूसरे पुरुष ने छुआ हो। ना बदलने वाले परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते जिसे दूसरे पुरुष ने छुआ हो। यहाँ एक प्रतीक में दर्शाया है, यदि आप ये देखना चाहते हैं तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया, शुद्ध बिना व्यभिचार, परमेश्वर का वचन और नामधारी नहीं जिसे मनुष्य के द्वारा चलाया गया हो। ध्यान दें, हम इसे यहाँ पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ढूंढ लें। मत्ती 5, यीशु ने यहाँ कुछ विशेष कहा है जो कि बहुत आवश्यक है, हम इसे देखना चाहते हैं। मत्ती 5, मैंने इसे लिखा है, मैंने कुछ चीजों पर निशान लगाया है, मैं ये मनुष्यों से कहने जा रहा था, इसलिए कहने को थोड़ा सा समय छोड़ दिया, ठीक, अपनी बहनों के सामने, परंतु मैं बाहर जाना चाहता हूँ इसके पहले। और बहन, मैं आपको वहाँ रखना चाहता हूँ जहाँ परमेश्वर के वचन ने आपसे प्रतिज्ञा की है, और आप देखें और आप उस पर उस स्थान पर बनी रहें। मत्ती 5:32, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि इस विचार का समर्थन करें, एक और बहुत। मत्ती 30, मैं सोचता हूँ ये मत्ती 5:32, 31 से आरंभ करें। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। ये यीशु बोल रहा है जिसने कहा आरंभ से, अब ध्यान दें। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे, वो उससे व्यभिचार कराता है। देखिए, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय तलाक दे, वो उसके व्यभिचार का कारण है, क्यों? वो फिर विवाह करेगी। और जो कोई उसे ब्याहे जिसे तलाक दिया गया है, व्यभिचार करता है। देखिए, उसके पास जीवित पति है, इसलिए कोई पुरुष उससे विवाह नहीं कर सकता। मतलब नहीं वो क्या करती है और वो कौन है, उसका पति जीवित है, उसके पास कोई आधार नहीं। परंतु ये उसके लिए नहीं है, स्त्री कारण है, पुरुष नहीं, समझे? आपको वचन की निरंतरता में चलना है। देखिए, वो नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ नहीं कहा, परंतु वो नहीं कर सकती। देखिए, वो कारण है, पुरुष नहीं। बाइबल ठीक यही कहती है, वो स्त्री कारण है। ये पुरुष के विरोध में नहीं कहा गया कि फिर से विवाह करे, परंतु स्त्री के लिए, क्यों? मसीह प्रतीक है। ध्यान दे, ये कहा गया कि वो फिर से विवाह नहीं कर सकता केवल कुंवारी से, फिर से वो विवाह कर सकता है, वो कर सकता है, वो फिर विवाह कर सकता है यदि वो कुंवारी है, परंतु किसी और की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, वास्तव में नहीं। और यदि वो तलाक दी हुई स्त्री से विवाह करता है तो वो व्यभिचार में जी रहा है। मैं चिंता नहीं करता कि वो कौन है। बाइबल ने कहा जो कोई उससे विवाह करता है जो छोड़ी हुई है तो व्यभिचार में जीता है। आप वही हैं, नहीं कोई तलाक वाली नहीं। देखिए वो मूल बात फिर आ गई आरंभ से। अब फिर विवाह कर रहा है। अब ध्यान दें, हो सकता है परंतु वो नहीं कर सकती। जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान, जैसे सारी बाइबल की निरंतरता है, अब वैसे ही जैसे दाऊद और वो सब बाकी। अब पहले कुरिन्थियों 7:10 में ध्यान दें, पौलुस पत्नियों को आदेश देता है जो जिसने अपने पति को तलाक दे दिया वो अकेली रहे या फिर से मेल कर ले, दोबारा विवाह नहीं, उसे अकेले ही रहना होगा या फिर अपने पति से फिर मेल कर ले। वो फिर विवाह नहीं कर सकती, उसे अकेले ही रहना है। परंतु ध्यान दे, उसने पुरुष के लिए कभी नहीं कहा। देखिए आप वचन को झूठा नहीं बना सकते। आरंभ से कामुकता का विधान बहुविवाह के द्वारा। अब परमेश्वर का वचन सच्चाई में परमेश्वर के स्वभाव के साथ आगे चलता है निरंतरता में। देखिए कैसे एक विद्यालय पूर्व में गया और इस पर दूसरा वाला पश्चिम में चला गया। आपको सच्चाई पर वापस आना है ये ढूंढने के लिए कि ये क्या है। ये सदा इसी प्रकार रहा है। परमेश्वर के संग आरंभ से ये निरंतर वाचा रही है। पहले आरंभ के पहले आरंभ से वो एक और एक था। पाप के आने के बाद तब वहाँ एक पुरुष और स्त्रियों का झुंड। प्रकृति में इस प्रकार चलता है। हर पशु और मनुष्य जाति और स्वाभाविक शरीर पशु है। हम स्तनधारी हैं, हम ये जानते हैं, हम सब, और ये परमेश्वर का स्वभाव निरंतरता में है। परंतु अब मोहरें खुल चुकी हैं, सच्चाई के आत्मा ने हमारा निर्देशन वचन की ओर किया, जो ये स्पष्ट करता है क्यों युगों में होते हुए ये गलतियाँ हुई, क्योंकि मोहरें नहीं खुली थी। ये प्रकट नहीं किया गया था, ये सत्य है। ध्यान दें, आप प्रतीकों को असफल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने गत रात्रि प्रचार किया था इस फर्श पर परछाइयों के विषय में, इसे ठीक ही आना है। कैसे एक हाथी की परछाई हो सकती है जो समतल पर आ रही हो और एक छोटा पतला व्यक्ति निकल कर आए, कि हाथी हो या हाथी एक छोटे दुबले पतले मनुष्य में। अब यदि आप इसको सिद्ध प्रतीक में ध्यान दें, अब वहाँ एक सच्ची स्त्री है, एक सच्ची स्त्री कुंवारी जो अपने पति से विवाह करती है और जीती है, और वो उस पुरुष के लिए धन्य चीज है। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को कोई अच्छी चीज देता एक पत्नी से, तो वो उसे वही देता। परंतु यौन क्रिया के लिए उसका ढांचा बनाया है, और कोई दूसरा पुरुष का ढांचा इस प्रकार का नहीं। पृथ्वी पर और कोई जीव इस प्रकार से अभी कल्प नहीं किया गया। यही कारण है कि बहुविवाह देखते हैं, इसी कारण से, यही जो इसे अंदर लाया। अब देखिए निर्णायक विश्लेषण में देखिए, एक यीशु मसीह है, क्या ठीक बात है? एक पुरुष परमेश्वर इमैनुएल, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? परंतु स्मरण रखें, उसकी बहुत सारी पत्नियां, हजारों हजार, क्या ये ठीक बात है? उसकी पत्नी दुल्हन कलीसिया। अब आप समझते हैं, इसी कारण उसने आदम से कहा, इसके पहले कभी कामुकता से परिचित हुए, फूलो फलो, पृथ्वी को भर दो। जबकि वो अभी आरंभ में था, जब वो अभी दोनों नर और नारी स्वयं में था, यह दर्शाता है कि दुल्हन को वचन में से आना है, उस आत्मिक फलने फूलने से। देखिए कि पृथ्वी को भर दे। अब यौन क्रिया में देखिए, विद्यालय दो बातों में मिश्रित हैं, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। आपको इसे इसके सत्य पर लाना ही है आरंभ में, और अंत में एक प्रभु यीशु होगा और उसकी दुल्हन बहुत सी। एक वचन, आप समझे?
On one throne, one king, after God's own heart, with 500 wives.
सिंहासन पर एक दाऊद था, एक राजा, परमेश्वर के हृदय के अनुसार, 500 पत्नियों के साथ। यीशु अपने सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। सहस्र शताब्दी में एक पत्नी के साथ, जैसा यह आरंभ में था, पृथ्वी में से उत्पन्न की गई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा पुनरुत्थान में बहुत सारे सदस्यों से आप वहीं पर हैं। स्त्रियों, वो होने को संघर्ष करें, मसीह में आए। अब आप उस गंदगी में वहाँ नहीं होंगी, परंतु जब तक आप कलीसिया के सदस्य स्वच्छ आचरण से जीने का यत्न कर रहे हैं स्वयं में, आप इसे कभी नहीं बनाएंगे। न ही पुरुष इसे मसीह से बाहर बना सकता है, जैसा कि आगे पौलुस कहता है, परंतु वे मसीह में हैं, तो वहाँ ना कोई नर ना नारी है, वे सब एक हैं। परंतु इस विवाह और तलाक को सही करते हुए, ताकि आप जान लें कि क्या सही है और गलत था। अब वो इन प्रतीकों में स्पष्ट दर्शाता है, एक मसीह है और उसकी पत्नी के बहुत सारे सदस्य। ध्यान दें, वो हमें आत्मिक व्यभिचार के लिए छोड़ सकता है किसी भी समय, झूठी शिक्षाओं के लिए वो चाहे तो, परंतु आप उसे छोड़ने का साहस कैसे कर सकते हैं और इसे बनाए। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु स्त्री नहीं कि अपने पति को छोड़कर और दूसरा विवाह करे। देखिए, सारी छायाएं और प्रतीक बिल्कुल सधे हुए हैं। मूल सृष्टि को देखिए, उप उत्पादन को नहीं, कहीं नहीं, कलीसिया नहीं, दुल्हन वचन के द्वारा स्त्री नहीं, हर बार पुरुष। इसी कारण ये पुरुष के विरोध में ये करने के लिए कुछ नहीं कहता, ये सदा स्त्री है, ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु वो मसीह की दुल्हन हो सकती है होने के द्वारा, और स्मरण रखें, वो पुरुष का भाग होने के कारण वो सकती है। बाइबल ने कहा वो नहीं सकती, जिस पर मैं स्त्री उपदेश न दे या ना कोई आज्ञा चलाए, परंतु शांत रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया और फिर हवा, और आदम बहकाया ना गया परंतु उप उत्पाद बहकाया गया। तो भी वो बचा ली जाएगी यदि वो पवित्रताई और संयम में बनी रहे, और बच्चे जनने के द्वारा, और सब, क्योंकि वो इस पुरुष की भाग हो जाती है। यही जो लाता है, क्यों अब्राहम नहीं, परमेश्वर ने क्यों नहीं सारा को मार डाला, ठीक वहाँ बैठी हुई मुकर रही है और परमेश्वर के सामने झूठ बोल रही है। वो मरणहार मनुष्य के समान बैठा है, मांस और रोटी खा रहा है, दूध पी रहा है, और उसने कहा पीछे वहाँ सारा क्यों हंसी, वहाँ उसके पीछे तंबू में, उसने उसे कभी नहीं देखा था, ये कह रहा था ये बातें कैसे हो सकती हैं। उसने कहा मैंने ये कभी नहीं कहा। ओ, ओ प्रभु परमेश्वर को उसके सामने ये बताओ, वो झूठा है। परंतु वो उसे न ले सका, क्यों? वो अब्राहम का भाग है। आमीन। वो बिना अब्राहम को नुकसान पहुंचाए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब आप स्त्रियों देखो, आप कहां से हैं, और बाइबल ने कहा आप स्त्रियों सारा जैसी थी वैसी बनो, जो स्वयं को लुभावने वस्त्रों से सजाती थी, अपने पति के प्रति ईमानदार और सच्ची थी, उससे इतना प्रेम रखती थी कि उसने उसे प्रभु कहती थी, शासक, स्वामित्व। और आप कुछ स्त्रियां भद्दे कपड़े पहनती हैं और बाहर जाकर स्वयं को पुरुषों के सामने दिखाती हैं। यीशु ने कहा जो कोई भी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखे वो अपने हृदय में उसके संग व्यभिचार कर चुका। तो फिर कौन दोषी है, पुरुष या आप? वो नर है, वो इस कार्य को ले सकता है, देखिए। और आप नारी, जिसे आप मना कर सकती हैं, आप क्यों आप स्वयं को इस प्रकार से रखती हैं? ये आराम के लिए नहीं है, आप जानते हैं ये नहीं हो सकता, जब आप उन छोटे छोटे कपड़ों के साथ मरण सन्न हो जाते हैं। देखिए, ये आराम के लिए नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या है? ये गंदगी के लिए। आप इसे नहीं मानेंगे, परंतु ये बाइबल है, इस प्रकार कहती है, ये सत्य है। ये गंदी आत्मा आपके अंदर है, आप गंदे नहीं होना चाहते, परंतु आप आत्मिकता में अनुभव नहीं करते, आप गंदे हैं, क्योंकि आप स्वयं को गंदा दिखा रहे हैं। अब एक मनुष्य उसके बूढ़े भद्दे गांठदार घुटने और पीठ उसके ऊपर कठिन तरह से ढकने को कपड़े हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी देह आकर्षित नहीं करती। क्यों? वो मूल सृष्टि में था, चरित्र होना चाहिए, परंतु आप उत्पादक हैं, जिसके के द्वारा आकर्षित हों। परमेश्वर अनुग्रह करे, ओ प्रभु, ये पाप में संसार जब ये समाप्त हो जाएगा मैं आनंदित हो जाऊंगा। ध्यान दें, वो जब भी चाहे अपनी पत्नी को किसी भी समय छोड़ सकता है, परंतु वो नहीं छोड़ सकती। वो मुझे बना सकता है, वो मुझे मिट्टी में से किसी भी समय फेंक सकता है। वो एक इशारा देता है, परंतु ओ भाई, अच्छा हो कि मैं उसे छोड़ने का यत्न कभी ना करूं, मैं समाप्त हो गया। सुलेमान किसी भी स्त्री को ब्याह सकता है जो कुंवारी हो। वो जिस भी स्त्री को चाहे ब्याह सकता है। याजक केवल उस स्त्री को ब्याह सकता है जो कुंवारी हो। सुलेमान जैसे दाऊद, उसने विवाह किया, उसका क्या नाम था? अबीगेल। वो जो पुरुष मूर्ख कहलाया, उसकी एक अच्छी पत्नी थी और वो मर गया। और अबीगेल ने दाऊद से विवाह किया था, वो एक राजा था, याजक नहीं। देखिए, इसलिए उसने विवाह किया, परंतु एक याजक ये नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने छुआ था या एक स्त्री को अपनी पत्नी होने के लिए लिया था जो कि पहले ही किसी पुरुष की पत्नी थी। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को दर्शाता है, दुल्हन को पवित्र होना ही होगा। वचन कहीं भी किसी वचन में न चूके, निश्चय ही। क्या आप सही दुल्हन की कल्पना कर सकते हैं कि एक छाती ना हो और दूसरी कुछ और खराबी हो? आप जानते हैं, वो मसीह की दुल्हन होने नहीं जा रही है, वो सिद्ध है। वो सब कुछ है, वचन, एक वचन भी कहीं नहीं चूकती। नहीं, ध्यान दें, वो उसे छोड़ सकता है, परंतु वो उसे नहीं छोड़ सकती। उसने ये किया, ये सिद्ध किया उन दिनों में जब लूथर, वेस्ली और पेंटिकॉस्टल, जब उन्होंने उसका अगला भाग होने से इनकार कर दिया, उसके आत्मिक लैंगिक व्यवहार से गर्भित होने को, वचन का अगला भाग होने को, आप समझे, उसने मना कर दिया। लूथर कलीसिया ने मसीह का इनकार कर दिया कि अपने साथ मसीह की और इच्छा करे। लूथर ने इसका इनकार किया। और मैं ये कह दूं, जो कैसे भी वे मुझे कहने जा रहे हैं, इसलिए ये आज उनमें से प्रत्येक के साथ है, वे उस वचन को लेने में असफल रहे, उन्होंने मसीह का इनकार किया। और कोई स्त्री जो अपने पति को बालक के लिए मना करती है, उसे उसकी पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं। आमीन। बाइबल में आप स्मरण रखें, जब राजा ने एस्तर से विवाह किया, क्योंकि रानी ने मना किया, उसने अपने लिए दूसरी कर ली। और जब उसने राजा के साथ बाहर आने को मना कर दिया, तो क्या हुआ? और उसकी बात माने। वही बात उस स्त्री के साथ है जो अपने पति से पत्नी होने का इनकार करे। और ऐसा ही ये कलीसिया के साथ है जो इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं गर्भित होने का इनकार करे, कि इस युग के लिए बालक उत्पन्न करे। हम लूथरन नहीं, हम वेस्ली नहीं, ना ही हम पेंटिकॉस्टल हैं। हमें इस युग के लिए परमेश्वर के वचन से गर्भित होकर इस युग के लिए बालक उत्पन्न करने हैं, वंश के बालक। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं। गर्भित नहीं हो सके, नहीं, इसलिए उसने क्या किया? उसने तलाक से छोड़ दिया। ये ठीक बात है, परंतु उसका साहस नहीं कि पुरुष को छोड़ दे, उसने स्त्री को छोड़ दिया। वो देह पर अपना वचन प्रकट करता रहा और उसे प्रमाणित करता रहा कि वो अपने में वैसा ही है। उसके बालक उसके समान दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि ये पूर्णतः पक रहे हैं, या वे वचन के बालक हो गए। कलीसिया के बालक नहीं, वचन के बालक। और दुल्हन वचन की अच्छी सुंदर महिला होगी, पवित्र, किसी भी मनुष्य की संस्था से छुई हुई नहीं, कोई भी मानव निर्मित परिकल्पना नहीं। वो शुद्ध पवित्र होगी, वचन की दुल्हन। आमीन और आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए जो बाहर संचार व्यवस्था पर हैं। वो परमेश्वर की गर्भित पुत्री होगी। देखिए, स्त्री के लिए क्या ही महान सम्मान है जो हो सकता है, क्या ही महान चीज जो कलीसिया हो सकती है। परंतु आप देखिए कि गंदगी ने उसे कहाँ जा लिया। तब तुलना करने का यत्न कर रहे हैं कि कलीसिया वहाँ कलीसिया के साथ है। आप ये नहीं कर सकते। और गली की वेश्या की तुलना जीवित परमेश्वर की कलीसिया के साथ करना, या स्त्री, सही स्त्री, वेश्या के साथ, इस प्रकार की चीज कैसे हो सकती है? ये परमेश्वर व्यवस्था, भिन्नता की व्यवस्था। हम कैसे जानेंगे कि दिन के उजाले का आनंद कैसे लें यदि वहाँ रात्रि ना थी? हम कैसे सूखे मौसम का आनंद लें यदि वहाँ वर्षा ना होती? हम कैसे वास्तविक स्त्री का सम्मान का आनंद कैसे लेंगे यदि वहाँ गंदी ना होती? इसे प्रकट करता जा रहा है, अपने वचन को प्रकट कर रहा है। हम में से कोई इस बात का साहस ना करे कि उसे छोड़ दे और दूसरा विवाह करे। अब निश्चय ही ये स्पष्ट है क्यों दोनों परिकल्पनाएं गलत हैं। आप इस प्रकार से नहीं चला सकते, ये हो गया। आप इसे चलाते हैं, ये प्रतिज्ञा के साहुल के को पीछे कर देता है। यहाँ प्रतिज्ञा है, ये यहाँ ठीक है। ये वचन विरोधाभास नहीं, अब इसे निरंतरता में चलना है, इससे अधिक नहीं। मत्ती 28:19 प्रेरित 2:38 के विरोध में। अब आप में से कुछ स्त्रियां, आप में से कुछ पुरुष, मैं जानता हूं आप इससे सहमत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे छिपा नहीं सकते, आप नहीं सकते। परंतु मैं आपको कुछ दिखाऊं। यदि मत्ती 28:19 ने कहा, इसलिए तुम जाओ सारे जगत में सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वे पलटे हर किसी का जिसका भी कभी बपतिस्मा हुआ उसके विरोध में, यीशु मसीह के नाम से हुआ। यहाँ तक कि सारे बाइबल के युग में से होते हुए और 300 वर्ष के पश्चात, बाइबल के युग के पश्चात से नीसिया नाम नीसिया सभा तक, इसके बदले में उन्होंने धर्म सिद्धांत अपना लिए। क्या अंतर है यदि ये प्रकट ना हो? आप जानते हैं कि सारी पुस्तक, सारी बाइबल एक प्रकाशन है। इस प्रकार से आप इसके और इसके बीच का सत्य जान जाते हैं। ये क्योंकि ये एक प्रकाशन है, और प्रकाशन ठीक वचन के साथ बैठना चाहिए, वचन के विरोध में नहीं। आप कहते हैं ये मुझ पर प्रकट हुआ, तब यदि ये वचन के विरोध में है तो ये कभी भी परमेश्वर के ओर से नहीं आया। ये ठीक बात है। अब यदि आप मत्ती 16:18 लेना चाहते हैं, यीशु ने स्वयं कहा कि समस्त कलीसिया उसकी कलीसिया उसी के प्रकाशन पर बनेगी जो कि वचन है। मैं तो उससे कहता हूँ कि तू पतरस है, मांस और लहू ने नहीं ये बात उस पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरा पिता जो कि स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है, और इस चट्टान पर। मैं जानता हूँ हमारे कैथोलिक मित्र लोग वहाँ हैं, आप कहते हैं ये पत्रस पर बना है, पत्रस प्रेरित अमुक प्रेरिताई के सहमति अनुक्रमांक में। प्रोटेस्टेंटों ने कहा कि ये यीशु मसीह के ऊपर बना है, भिन्न होने के लिए नहीं, परंतु देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है। और इस चट्टान पर, आत्मिक प्रकाशन पर, की वचन क्या है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसे कभी नहीं हिला सकेंगे। उसकी पत्नी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होगी। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसे कभी नहीं हिला सकेंगे। और हाबिल और केन अदन वाटिका में, केन ने अपनी धारणा बना ली। उसने कहा अब देखो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो कुल मिलाकर सारी प्रकृति, इसलिए सेम और आलू, मैं फूलों को लूंगा और मैं उसके लिए वास्तविक सुंदर वेदी बनाऊंगा। यही कलीसिया है। उसने घुटने टेकाए, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की आराधना की, अपने हाथों को रखा और बलिदान चढ़ाया। उसने सारी चीजें धार्मिकता में की जो हाबिल ने किया। हाबिल ने उसी प्रकार की वेदी बनाई, परंतु जब हाबिल अपना लाया वो मेमना लाया। अब केन ने सोचा कि पाप के लिए विरोधी दवा बनाई कि उसके पिता और माता ने फल ही खाया होगा, जैसा कि उन्हें वाटिका में सिखाया गया था। परंतु हाबिल दिव्य प्रकाशन के द्वारा ये जान गया कि ये लहू था जिसने किया, दिव्य प्रकाशन के द्वारा। बाइबल ने कहा इब्रानियों 12:11 कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा प्रकाशन से परमेश्वर को केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने गवाही दी कि वो धार्मिक है। क्या ये ठीक बात है? आमीन। भाई बहनों, ये इतना स्पष्ट है जितना हो सकता है मेरे लिए। यही सारी बात है। अब विवाह और तलाक पर देखिए, इसे प्रकट होना है। जब तक ये प्रकट ना हो आप इसे नहीं जानते, परंतु उसने इन अंत के दिनों में प्रतिज्ञा दी है इस युग में कि बाइबल के हर भेद प्रकट हो जाएंगे। कितने ये जानते हैं? प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, यीशु ने इसकी प्रतिज्ञा दी है कि ये सारे छिपे हुए भेद, विवाह और तलाक पर और दूसरे सारे भेद जो रहे हैं, इस अंत के समय में प्रकट हो जाएंगे। अब आप स्मरण रखें, आवाज ने कहा ट्यूसान जाओ, आकाश की वो रहस्यमय ज्योति को स्मरण करें, 7वां दूत वहाँ खड़ा हुआ है, वापस आओ और 7 मोहरों का खुलना, ध्यान दें क्या घटित हुआ। ये सत्य है। अब थोड़ा सा आगे, परंतु तुम सब सुनो, मैं जानता हूँ आपका समय है कि आप आज जाकर खाना खाएं, परंतु मैं बस अच्छा खाना खा रहा हूँ। ध्यान दें, अब स्त्री ने अपना स्थान पा लिया और वो एक रत्न है। सुलेमान, इस पुरुष के पास 10,000 पत्नियां थीं, बल्कि हजारों पत्नियां थीं। उसने कहा कि एक पुरुष जिसने एक पत्नी पाई उसने एक अच्छी चीज पाई। उसने कहा एक भली स्त्री उसके मुकुट में रत्न है, ये एक सम्मान है, परंतु अधर्मी उसके लहू में पानी है, ये उसका जीवन है। उसने कहा हजारों में एक धर्मी हो सकता है, ये सुलेमान ने कहा, परंतु कहा आप हजारों में एक धर्मी स्त्री नहीं पाएंगे, ये सुलेमान ने कहा। देखिए, अब आप इस पर ध्यान दें कि ये कैसे है। परंतु आप एक महिला को देखते हैं, आप एक रत्न है, यदि आप रत्न होना चाहती हैं, परंतु इच्छा आपकी होनी चाहिए। और आप देखिए क्यों विवाह और तलाक था कि यीशु ने पीछे की ओर संकेत किया, यही था क्योंकि आपकी जाति इन सारे पापों का कारण थी। यही कारण है बहु विवाह और तलाक और चीजें मिलाई गई। आरंभ में ये ऐसा कभी नहीं था और ये नहीं होगा उस आने वाले संसार में। याकूब को देखिए जिसमें से प्राचीन निकले, उसके पास कम से कम दर्जनों भर पत्नियां थीं। उसने दो बहनों से विवाह किया, इसके अलावा उसके पास रखेल थी। साधारण रिवाज में स्त्रियां जो उसके संग रहीं और वे प्राचीन पूर्वज उन रखेलियों से जन्मे। क्या ये ठीक बात है? देखिए, वचन को ठीक निरंतरता में चलना चाहिए। ओ, इस पर मेरे पास पन्ने भरे पड़े हैं। यदि किसी क्लर्जीमैन ने मुझसे कभी प्रश्न किया और हम एक साथ मिलेंगे, हम इस पर बात कर सकते हैं। यदि उसके अंदर कोई आत्मिकता है, वो यहाँ देख सकता है कि ये सत्य है, इस पर कोई प्रश्न नहीं। एक भली स्त्री एक अच्छी चीज है, मैं ये जानता हूँ। मैं एक वास्तविक स्त्री के द्वारा जानता हूँ। मैं वास्तविक स्त्री से मिला हूँ जो कि असली है, ऐसी ही वास्तविक जैसे कोई पुरुष जो कभी चला। वो एक उत्पाद और उसका एक टुकड़ा है, और गिरावट में उसने उसकी सुनी, वो बस स्त्री उसका भाग है। परंतु ये उस पर है, वो बनाई गई है ताकि अश्लील हो सके, और उसे अधिकार दिया गया है कि मना करे या स्वीकार करे। आरंभ में ये मूल प्रकृति के विरुद्ध है, देखिए, परंतु आप यहीं पर हैं। अब ये 12 बज रहे हैं, इसलिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए छोड़ जाऊंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब स्मरण रखें, मैं ये अब केवल अपने झुंड से कहता हूँ और बाहर संचार पर मैं ये केवल अपने अनुयायियों से कहता हूँ। ये संदेश केवल उन्हीं के लिए है, और जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ, कोई भी सेवक, वो जो उसका है, जी हाँ, वो अपने झुंड का चरवाहा है, जो भी वो चाहता है करने दें, ये उस पर और परमेश्वर पे है। कोई याजक, कोई प्रचारक, मेरे भाई, ये आप पर निर्भर करता है। मैं केवल यहाँ जेफरसन विले में बोल रहा हूँ, केवल यही स्थान जहाँ मैं इस पर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना झुंड है। ये झुंड जो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है कि समझूं और इसकी देखभाल करूं, वो मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा। और मेरे ये लोग समस्त राष्ट्र से बदले हैं जिनकी अगुवाई मैंने मसीह तक की। और छोटे बालको, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए हूँ और मैं आपका मित्र हूँ। आप सोच सकते हैं मैं आपके विरोध में बोलता हूँ, मैं ये देखिए आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि ये ऐसा नहीं है तो परमेश्वर मेरा न्यायी है। आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये एक अजीब और कठोर बात है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे सामने लाऊं। मैं क्या करूँगा जब भक्त मंडली में यहाँ पुरुष और स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, उनमें से कुछ ने 2 या 3 बार विवाह किया है, अच्छे पुरुष, अच्छी स्त्रियाँ, सब मिले जुले। इसने क्या किया? झूठी शिक्षा। ठीक बात है, प्रभु पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य अलग ना करे, ना कि जिसे मनुष्य ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने साथ जोड़ा है। जब आपको परमेश्वर से सीधा प्रकाशन मिला, वो आपकी पत्नी है और वो वही चीज जो आपकी बाकी सारे जीवन भर है, समझे। परंतु जो मनुष्य जोड़ता है कोई भी अलग कर सकता है, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने साथ जोड़ा है, अच्छा है कि मनुष्य उसे छूने का यत्न न करे। जो भी परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है, उसने कहा कोई मनुष्य अलग न करे, ना कि जिसे किसी आधे पिए हुए मजिस्ट्रेट ने या किसी ने एक साथ कर दिया, या कोई पिछड़ा प्रचारक पुस्तक में ढेर सारे मतों के साथ जो उन्हें संसार में कुछ भी करने देगा और परमेश्वर का वचन ठीक वहाँ पर हो, समझे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे परमेश्वर ने साथ जोड़ा है। अब मैं इसे आपसे कहने जा रहा हूँ, जो मैं आपसे कहता हूँ मैं उसमें सतर्क हूँ। मेरा अर्थ आपके साथ कठोर होने का नहीं है, मेरा अर्थ कठोर होने से नहीं है मेरे पास्टर भाइयों, मेरा ये अर्थ नहीं है, परंतु मैं उत्तरदायी हूँ ये अनुभव करते हुए कि ये मेरे हाथों में दिया गया है और यदि मैं इसे रोक नहीं सकता, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे बाहर लाऊं, और मैं जानता हूं कि ये टेप, ओ प्रभु मैं तैयार हो जाऊंगा, कार्यस्थल खुला हुआ है क्योंकि ये आता है यहाँ, समझे, जैसे कि ये सर्प वंश पर था परंतु ये पूरी रीति से सिद्ध हुआ। मेरे पास यहाँ कागज है, बाहर कागज पर, जहाँ स्त्री ठीक अब, यहाँ तक कि इस महान में उसमें कुछ बड़े बड़े धर्म प्रदेशों के पास इसका मूल चित्र है। एक सांप स्त्री के पैरों पर रेंग रहा है और कैसे उसके चारों ओर है, उसके पास सब प्रकार की संवेदनाएं हैं और चीजें, कुछ जो पुरुष उसके साथ कभी नहीं छुएगा, इस लिपटे हुए सांप के साथ जो उसके चारों ओर है और आदि आदि, ये बिल्कुल सत्य है और ये बुरे से और बुरा होता जा रहा है। सर्प जो कि वो नहीं था, वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं कर सकता जब वो एक सांप था, परंतु स्मरण रखें, उस दिन मेरे साथ बहस हो गई, बहस नहीं बस असेंबली ऑफ गॉड का एक सेवक और साथी बोला कि इसमें आप गलत हैं। मैंने कहा भाई मैं हो सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं। तब उसने कहा, आगे बढ़कर इस पर बात करने लगा, पहली बात आप जानते हैं वह स्वयं में ही भटक गया, और एक बात उसने कही, उसने कहा भाई ब्रैनम वो जाति कहाँ है, परमेश्वर ने कहा अपने ही प्रकार का, अब वो जाति कहाँ पर है, आपने कहा ये मनुष्य और पशु के बीच थी, विज्ञान इसे खोज ना सका, वो कहाँ पर है, बोला क्या वो पृथ्वी पर है, क्या वो एक चिंपैंजी था, नहीं, क्योंकि चिंपैंजी का लहू स्त्री से मेल नहीं खा सकता, नहीं कोई भी दूसरा जानवर इसके साथ नहीं मिलेगा, नहीं ये नहीं होगा, ना ही मनुष्य का शुक्राणु मादा के साथ मिलेगा, ये नहीं चलेगा, तो फिर वो विशेष जानवर कहाँ पर है। अब परमेश्वर ने कहा हर चीज अपने ही प्रकार का जन्माए, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और पवित्र आत्मा की मिठास ने कहा इसे बताओ ये यही है। अब पहले मैंने कहा भाई हो सकता है कि वो अब अलग हो गया हो, उसने कहा परंतु भाई ब्रैनम हम वचन के विषय में बातें कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, और मैंने कहा वे निसंदेह दूसरी चीजों का दावा करते हैं जैसे डायनासोर और मैमथ और आदि आदि, मैमथस बल्कि वे अलग हो गए आदि आदि, मैंने कहा हो सकता है वो रहा हो, उसने कहा भाई ब्रैनम हम वचन के प्रमाण के विषय में बातें कर रहे हैं, यदि पाप यहाँ पर है तो फिर मूल पाप तो उसे भी यहाँ होना चाहिए, और मैंने कहा प्रभु यीशु आपने कहा मत सोचो कि तुम्हें क्या कहना है जब तुम मनुष्य के सामने आओ, क्योंकि ये तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा, प्रभु मैं क्या कहूँगा, उसने कहा उसे बताओ ये यहीं पर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मंच पर दर्शन देखता हूँ, मैंने कहा ये यहीं है, नहीं जानता कि कहाँ, उसने कहा कहाँ, और इसके पहले कि मैं कुछ भी सोच सकूं, उसने कहा ये सर्प है, बिल्कुल यही जो था, क्योंकि वो अब पशु नहीं रहा, वो श्रापित हुआ और अपने बाकी जीवन अपने पेट के बल हो गया, वो यहाँ है, क्या ये ठीक बात है, और अब भी उसी कार्य पर जो उसने किया, अब भी वही पाप स्त्री के चारों ओर कार्य कर रहा है जैसे कि नर वासना के समान, यही जहाँ स्त्री का अपना चिट्ठा वाली दशाएं हैं और आदि आदि, जब उसकी संवेदनाएं उसके आपे से बाहर हैं जो कोई भी मनुष्य कर सकता है। मैं यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि हमें मिली जुली भीड़ में है, मैं कुछ मनुष्य को लूंगा, हम इस विषय पर बातें करेंगे, सारे कागज और चीजें ठीक यहाँ पर रखी हैं, अभी मेरे हाथों में है और मैं इस प्रातः आप तक पहुँचाने जा रहा था, मैं इस पर पूरा दिन लेने जा रहा था, परंतु मैं ये कहते हुए बंद करूंगा, ये केवल मेरी कलीसिया के लिए है, वो छोटा झुंड जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरे पीछे चलता है ये उनके लिए है। उस दिन ये जानते हुए कि जब मैं आपको कुछ बताता हूँ ये यहोवा यूं कहता है मैं आना चाहिए, तब मेरे पास वे वचन थे जैसा कि उसने मुझ पर प्रकट किया, परंतु प्रभु परमेश्वर मैं क्या कह सकता हूँ इस भक्त मंडली से, मेरे पास अलगाव होंगे, पुरुष उस बालकनी में बैठे होंगे और बाहर मैदान में और हर जगह, क्या मैं स्त्री को छोड़ दूं, स्त्रियां क्या मैं अपना पति छोड़ दूं, मैं क्या करूंगी, मैंने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, किसी चीज ने मुझसे कहा वहां सामने पहाड़ पर जा और मैं तुझसे बात करूंगा, जबकि मैं पहाड़ में था ये ना जानते हुए कि नीचे ट्यूसान में वे इसे देख रहे थे, परंतु यहाँ तक शिक्षकों ने बालकों को बुलाया, मेरी छोटी लड़की, और वे कक्षा में से और कहा सामने उस पहाड़ पर देखो, वहाँ एक अग्निमय दिखने वाला तिरुमणि वाला बादल हवा में ऊपर और नीचे जा रहा है, ऊपर हवा में जाता है और वापस नीचे आता है। श्रीमती इवान क्या आप यहाँ हैं? रॉनी तुम यहाँ हो? मैं वापस पेट्रोल पंप पर आया। यह युवा लड़का वहाँ पेट्रोल पंप पर था। इवान पेट्रोल पंप वहाँ है, और इसके पहले कि मैं जान पाता कि लड़का क्या कहने जा रहा है, उसने पहले ही मुझे ले लिया। उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम, हाय ब्रैनम, आप वहाँ सामने उस पहाड़ पर थे या आप नहीं थे? मैंने कहा, रोनी तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, देखिए, देखता हूँ वो क्या करने जा रहा था। बहुत सी बार चीजें घटित होती हैं, मैं नहीं, आप लोगों से ये नहीं कहते, ये हो जाता है। इसकी बात ये है, आप बहुत कुछ होते देखते हैं और ये आपके लिए साधारण सा हो जाता है, समझे? मैं बस लोगों को नहीं बताता। मैंने कहा, रोनी तुम क्या थे? उसने कहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कहाँ पर थे। कहा, मैंने मामा को बुलाया और हम यहाँ खड़े हुए और उस बादल को सामने देखा, ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा, ये तो भाई ब्रैनम को वहीं कहीं बैठा हुआ होना चाहिए, ये तो परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। और सारे नगर के लोगों ने ये देखा। उस साफ चमकदार दिन में कहीं कोई बादल नहीं, इस बड़े तृणमणि बादल के साथ वहाँ पर नीचे कीप के समान आ रहा है और वापस जा रहा है और फैल जाता है। मित्रों, और फिर मैं बंद कर रहा हूँ, आप इससे जा सकते हैं। ये जब ये मुझ पर प्रकट किया गया था, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस पर ना चूके। अब मैं केवल अपने अनुयायियों से बोल रहा हूँ जो मेरे पीछे चल रहे हैं, और केवल इस संदेश के बाहर के नहीं, परमेश्वर के सामने मेरी गवाही केवल इस झुंड के लिए। अब हमने इस विवाद में पाया धर्म विज्ञान के गलत अनुवाद के कारण। क्या ये ठीक बात है? इसी कारण तुम स्त्रियों ने दूसरी बार विवाह किया और तुम पुरुषों धर्म विज्ञान के गलत अनुवाद के कारण। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो उसने मुझे बताया। और यदि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता इस प्रश्न पे प्रश्न करे, जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, यीशु मसीह, और जब उनका छुड़ाने वाला भविष्यद्वक्ता सामने आया, वो मूसा, मिस्र में की बालकों को मिस्र से बाहर लाए और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुँचा दे, और यीशु ने कहा यहाँ जो मूसा ने लोगों की इस दशा में देखा और उन्हें लिखित तलाक देने की अनुमति दी, क्योंकि स्थिति जो ऐसी थी, मूसा ने ऐसा पाया जैसा उसे होने दो। परमेश्वर ने मूसा को अनुमति दी, वो भविष्यद्वक्ता जो लोगों के पास भेजा गया, कि इन्हें इस लिखित तलाक की अनुमति दे। पहला कुरिन्थियों का सातवां अध्याय, बारहवां और पंद्रहवां पद नए नियम में, भविष्यद्वक्ता पौलुस, जिसका सामना कलीसिया में ऐसी ही चीज से हुआ, और ये बोला, ये मैं हूँ ना कि प्रभु। ये ठीक बात है, तलाक की दशा के कारण आरंभ से ये ऐसा नहीं था, परंतु मूसा ने इसकी अनुमति दी और परमेश्वर ने इसे धार्मिकता की मान्यता दी। और पौलुस के पास भी अधिकार था जब उसने कलीसिया को इस दशा में पाया। अब आप विश्वास करते हैं कि ये सत्य है और विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया और उसके बादल के द्वारा प्रमाणित किया और उसका संदेश जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। क्या परमेश्वर को मुझे उस पहाड़ पर ये बात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? आपको ऐसे ही चलने दूं जिस प्रकार से आप हैं और इसे और ना करें? अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाओ और शांति से रहो, क्योंकि देर हो चुकी है, प्रभु का आगमन निकट है। हमारे पास समय नहीं कि इन चीजों का खुलासा करें। दोबारा सा ऐसा करने का साहस ना करें। मैं केवल अपनी भक्त मंडली से कह रहा हूँ, परंतु यदि आप विवाहित और परमेश्वर ने मुझे इसका गवाह बनाया है उस पहाड़ पर, जो कि मैं ये कह सका, एक अलौकिक प्रकाशन सात मोहरों के खुलने के कारण, और परमेश्वर के वचन में ये प्रश्न है, उन्हें ऐसे ही बढ़ने दो जैसे वे हैं और अधिक पाप न करें। आरंभ से ये ऐसा नहीं था, ये ठीक बात है, ये ऐसा नहीं था और ये अंत में भी ऐसा नहीं होगा, परंतु आधुनिक स्थिति में परमेश्वर के दास के समान मैं स्वयं को उसका भविष्यद्वक्ता नहीं कहूंगा, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि हो सकता है यदि मैं इसके लिए नहीं भेजा गया होता तो मैं उसके लिए भूमि का तैयार कर रहा हूं जब वो आता है। इसलिए इन आधुनिक परिस्थितियों में मैं आपको आज्ञा देता हूं कि अपनी पत्नी के संग घर जाएं। यदि आप उसके साथ आनंदित हैं तो उसके संग रहें। परमेश्वर की चेतावनी में अपने बालकों का बच्चों का पालन करें, परंतु परमेश्वर आप पर दया करे यदि आप ये फिर कभी करें। आप अपने बालकों को सिखाएं कि ऐसे कार्य को कभी न करें, उन्हें परमेश्वर की चेतावनी में पालें। और अब आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आइए अब चलें इस देर सांझ की घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं और मसीह में उस बुलाहट के लिए यत्न करते रहें जहां सारी चीजें संभव होंगी। जब तक आज रात्रि मैं आपको फिर न देखूं, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। जबकि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तू वही महान यहोवा जिसने मूसा की सही। मूसा वो दास और वो अपने लोगों से क्या कहे, और परमेश्वर आपने उसे कष्ट दिया कि लिखित में तलाक दे। पौलुस वो महान प्रेरित जो कि नए नियम का लेखक जैसे मूसा पुराने का था, मूसा ने व्यवस्था लिखी और एक व्यवस्था का विधान, बहुत से भविष्यद्वक्ता उनके वचन इसमें डाले गए, परंतु मूसा ने व्यवस्था लिखी और आपने उसे लिखने दिया कि वे उन्हें लिखे तलाक के लिए लिखें उनके हृदय की कठोरता के कारण। वो महान संत पौलुस नए नियम के लेखक होने के नाते वो भी एक दृढ़ कथन दे सका कि मैं इन परिस्थितियों में बोलता हूँ मैं न कि प्रभु। ऐसे ही आज है प्रभु परमेश्वर, आज संसार के अंत में जैसे कि हम यहाँ परमेश्वर की दया में ये जानते हुए कि जल्द ही हमें उसकी उपस्थिति में उत्तर देना है और कि आपने बहुत कुछ किया, प्रभु इन लोगों की दृष्टि में मैं निश्चित हूँ ये इस पर निर्भर करेंगे जैसे कि ये आपकी ओर से है। और आज इस बात के गवाह बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने पहाड़ पर वो चिन्ह देखा जहाँ की प्रभु का सरदूत चक्रवात में आया, जहाँ वो सात सरदूतों में आया, जहाँ उन सात भेदों को खोला गया, और वही सरदूत उसी दिशा उसी पहाड़ पर वो दिन के कि ये प्रकट किया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग धन्यवाद करते हुए घर जाएंगे कि परमेश्वर ने इनके लिए ये दया प्रदान की है। प्रभु मैं तो केवल बोला हूँ उस अनुमति से, और मैंने केवल अनुमति से बोला है प्रभु, और होने दे कि लोग इतने धन्यवादित रहें कि वे इस पाप को फिर कभी दोबारा करने का कभी यत्न ना करें, परंतु आपको पूरे हृदय से प्रेम करें। प्रभु इन परिवारों को आनंदित कर दें और ये बढ़ें और अपने बालकों का पालन परमेश्वर की चेतावनी में करें, क्योंकि मेरा संदेश जो मेरे हृदय पर था सुना दिया है प्रभु। मैंने वो सब कर दिया जो मैं जानता था कि कैसे करूं, और शैतान कई सप्ताहों से मुझसे लड़ा और वो बिना सोए वो समय, परंतु अब मैं आज्ञा देता हूं इन लोगों को कि वे इसका अध्ययन करें और जाकर आपके लिए जिएं। प्रभु इसे प्रदान करें, अब मैं बरी हूं, ये आपके हाथों में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें आशीषित करेंगे, इन रुमालों को आशीषित करें प्रभु जो यहां पर रखे हुए हैं उन बीमारों और दुखियों के लिए। बोले पाए ये रात्रि एक महान सामर्थी रात्रियां हों कि सारे लोग चंगे हो जाएं। प्रभु इसे प्रदान करें, हमें संग संग आशीष दें, हम शांति आनंद और खुशी के साथ जाएं, क्योंकि सृष्टि के परमेश्वर ने हमें दिखाया आरंभ से और हम तक पहुंचाया, हमारे विवाद में जिसमें हम थे फिर से उसका अनुग्रह इन अंत के दिनों में। ओ महान और अनंत परमेश्वर, इसके लिए हम कैसे आपका धन्यवाद करें, और हमारे हृदय इतने प्रसन्न हो जाएं कि हमारे अंदर फिर से पाप करने की कोई इच्छा नहीं होगी आपके विरोध में, यीशु के नाम में आमीन। मैं उससे प्रेम करता हूँ, आपको क्यों नहीं उससे प्रेम करना चाहिए? मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी पर। मैं अभी से कहता हूँ ताकि सेवक समझ जाएंगे, ये उनके लिए है जो केवल इस संदेश का अनुकरण करते हैं। ओ क्या आप प्रसन्न हैं? मैंने आपको सत्य बताया है। यहोवा यूं कहता है, ये सारा का सारा। अब हम खड़े हो जाएं और अपने अपने हाथ उठाएं, जैसे कि हम फिर गाते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसके अनुग्रह के लिए उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी दया के लिए उससे प्रेम करता हूं, मैं उसके वचन के लिए उससे प्रेम करता हूं, और प्रभु का वचन उसके भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ। भाई आइए,